राधे मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन वास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी,
जय राधा माधव
कुंज बिहारी, जय राधा
Come on.
Hare Krishna. वासुदेवाय
अद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपुतनुभिंगम श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत कथा के इस चतुर्थ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का वांग्मय स्वरूप है, जिसका श्रवण करके भगवान के प्रति हम प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसी भागवत कथा का श्रवण यहां पर तीन दिन से हम सब कर रहे हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राधे। भगवान के चरणों में प्रेम तब तक उत्पन्न नहीं होता है जब तक हम भगवान की कथा नहीं सुनते हैं, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ तो यह मनुष्य जीवन विफल माना जाता है। प्राय मनुष्य जीवन प्राप्त करके सब लोग धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, परंतु यह चार पुरुषार्थ से बड़ा पुरुषार्थ है जिसे पंचम पुरुषार्थ कहते हैं, वह प्रेम। भगवान के प्रति प्रेम यही है जीव का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, और भगवान के प्रति प्रेम भगवत कथा श्रवण करने से होता है। इसके ज्वलंत प्रमाण है आज से 5000 वर्ष पहले श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में रुक्मणी जी की कथा आती है। रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था। परंतु रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। दूसरे ही दिन विवाह था। अगले दिन उन्होंने पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण को। कृष्ण वो पत्र पढ़ते हैं। रुक्मणी ने लिखा है कि हे कृष्ण, मेरा भाई रुक्मी मेरा विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, परंतु मैं शिशुपाल से विवाह करना नहीं चाहती हूं, हे कृष्ण मैं आपसे प्रेम करती हूं और कृपया करके आप यहां पर आइए और मेरे साथ विवाह कीजिए। हे कृष्ण यदि मेरा विवाह आपके अलावा किसी और के साथ हुआ तो मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण के मन में स्वाभाविक यह प्रश्न उठना था कि आज तक रुक्मणी ने मुझे देखा नहीं, मेरे साथ बातचीत नहीं हुई, फिर भी वे मुझसे इतना प्रेम क्यों करती हैं। तब रुक्मणी वह पत्र में लिखती है, हे कृष्ण मैंने आपको कभी देखा नहीं है लेकिन फिर भी आपके साथ आपके चरणों में मेरा प्रेम अद्भुत अपरिसीम अपार है और इसका एकमात्र कारण श्रुत्वा भुवान सुंदर गुणे, मैंने आपको देखा नहीं है परंतु आपके बारे में अवश्य सुना है। नारद व्यास इत्यादि ऋषि मुनियों के द्वारा आपकी लीला आपकी कथा सुनकर आपके साथ इतना प्रेम हो चुका है कि अब मैं आपके बिना रह नहीं सकती। यह प्रसंग से बहुत सुंदर शिक्षा मिलती है। हमने भी भगवान को कभी देखा नहीं है परंतु फिर भी उस भगवान के प्रति हम प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं उस भगवान की कथा सुनकर। कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम होता है। परम सौभाग्य है कि अजमेर भैया गुलर गांव में भगवान के चरित्र की कथा हम सब श्रवण कर रहे हैं जिसका सर्वोच्च लाभ भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। गत सत्रों में हमने भगवान के तीन अवतार की कथा सुनी, सर्वप्रथम मत्स्य अवतार, तत्पश्चात भगवान के कुर्म अवतार की कथा और तत्पश्चात भगवान के वराह अवतार की कथा श्रवण की। आज हम भगवान श्री कृष्ण के चतुर्थ अवतार, जिस अवतार का नाम है नरसिंह अवतार। जयदेव जी कहते हैं, तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगम। भगवान नरसिंह के कर कमल अद्भुत है और दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम। हिरण्यकशिपु की छाती वज्र की तरह कठोर है परंतु भगवान नरसिंह देव के कर कमल और उनके हाथों में उस कर कमल में जो नाखून है वह नाखून इतने अद्भुत है कि उस नाखून के द्वारा हिरण्यकशिपु की वज्र के समान छाती को फाड़ा गया। जो नर भी नहीं है और पशु भी नहीं है, जो आधे नर है और आधे सिंह है, ऐसे भगवान नरसिंह को मैं प्रणाम करता हूं। केशव धीता नर हरि रूपा जय जगदीश। हरि का एक अर्थ सिंह भी होता है जिसका आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह का है, उसे नरहरि कहा जाता है। तो आज हम भगवान नरसिंह देव की कथा सुनेंगे। यह कथा श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुनाते हैं। वास्तव में यह मूल कथा राजसूय सभा में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सुनाते हैं। श्रीमद् भागवत का सप्तम स्कंद नारद मुनि के द्वारा कथित है और नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को जो कथा सुनाई वही कथा गंगा के तट पर हरिद्वार में सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाई। श्रीमद् भागवत में 10 विषय वस्तु है। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतयः मन्वंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रये। श्रीमद् भागवत का प्रथम तत्व प्रथम विषय सर्ग का विषय है। तत्पश्चात विसर्ग ब्रह्मा जी के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि होती है। तत्पश्चात भागवत में अनेक अनेक लोक लोकांतर और स्थान का वर्णन किया गया है। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में पोषण तत्व का वर्णन, जिस कथा को सुनकर भक्ति को पोषण मिलता है, और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत में उति तत्व का वर्णन हुआ है। श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद में उति तत्व का वर्णन है। यह प्रहलाद महाराज की जो कथा है, नरसिंहदेव भगवान की जो कथा है, ये उति तत्व के अंतर्गत श्रीमद् भागवत में रखी गई है। और उति का अर्थ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उतयः कर्म वासना। उति का अर्थ होता है इस संसार में जो जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल प्राप्त होता है। कर्म की गति बहुत न्यारी है, इसलिए सभी मनुष्य को सोच समझ कर संभल कर कर्म करने चाहिए। इस उति तत्व के अंतर्गत प्रारंभ में ही कहा गया कि भगवान के धाम में अद्भुत ऐश्वर्य है, अद्भुत सुख है। उस भगवान के धाम में वैकुंठ में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक सनातन सनंदन इत्यादि, ब्रह्मा जी के प्रथम 4 पुत्र भगवान के धाम में भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। जब ये ब्रह्मा जी के पुत्र वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे तब वैकुंठ के द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े थे। एक द्वारपाल का नाम जय और दूसरे द्वारपाल का नाम विजय था। ये जय और विजय वैकुंठ के द्वार के द्वारपाल थे। ये ब्रह्मा जी के पुत्र सनक सनातन इत्यादि जब उस वैकुंठ के द्वार से प्रवेश करना चाहे तब जय और विजय द्वारपाल ने उसे रोक दिया, आप लोग अंदर नहीं जा सकते हो। बोले क्यों नहीं जा सकते हो? क्योंकि हम ना कह रहे हैं। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने बहुत समझाया मनाया, नहीं माने। ब्रह्मा जी के पुत्र कहते हैं कि हम जाएंगे। जय और विजय कहते हैं नहीं जाने देंगे। जब जय और विजय ने सनक सनातन इत्यादि को भगवान से मिलने में रोकने में मना कर दिया तब सनकादिकों को क्रोध आ गया कि आप लोग भगवान को मिलने में बाधा दे रहे हो, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि आपका कार्य असुर जैसा है। असुरों का स्वभाव होता है कि वे भगवान से मिलने नहीं देते हैं। हम लोग भगवान को मिलना चाहते हैं और तुम मिलने नहीं देते हो, असुर जैसा कार्य करते हो, इसलिए हम आपको श्राप देते हैं कि तुम दोनों असुर हो जाओ। असुर बनने का श्राप, और साथ में कह दिया एक नहीं 3 जन्म तक असुर रहोगे। जैसे ही सनकादिकों ने श्राप दिया उसी समय भगवान श्री विष्णु वैकुंठ के द्वार अंदर से बाहर आए। और बाहर आकर देखा तो ये क्रोधित होकर श्राप दे चुके। जय और विजय भगवान के पार्षद दोनों भगवान के चरणों में गिर गए, प्रार्थना करने लगे, प्रभु इन्होंने हमें बहुत बड़ा श्राप दिया है। देखिए यहां पर बहुत सुंदर उपदेश मिल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ही किसी वैष्णव को, किसी भक्त को दुखी करता है, यदि कोई व्यक्ति ही किसी वैष्णव, किसी भक्त का दिल दुखाता है तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलती है। यहां पर संकादिकों को दुखी किया, जय और विजय जो भगवान के धाम में रहते थे उनको असुर बनना पड़ा, फिर भी भगवान के चरणों में विनंती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हम तो आपके सेवक हैं और इन्होंने हमें श्राप दिया है असुर बनने का, प्रभु हम असुर बनने के लिए तैयार हैं, परंतु आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि ये तीनों जन्म में हम आपकी स्मृति न भूले, हमें आपकी सदैव याद रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। तब भगवान श्री विष्णु जय और विजय को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तीन जन्म असुर कुल में होगा और तीनों जन्म में मेरे हाथ से मैं तुम्हारा वध करूंगा और उद्धार करके फिर से इस वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र का अपराध करने के कारण जय और विजय को श्राप मिला। इस संसार में जो व्यक्ति किसी को दुखी करता है, कष्ट देता है, निश्चित उसके जन्म में कष्ट आना है। हमारे इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं हैं। आज से करीबन 550 वर्ष पूर्व हमारे भारत में बंगाल में एक भक्त का जन्म हुआ जिसका जन्म तो मुसलमान परिवार में हुआ था परंतु वह कृष्ण के भक्त थे। और एक बार उन्होंने राजा की सभा में कहा कि भगवान श्री कृष्ण का नाम इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का नाम लेने की बात तो दूर रही, यह सोच लेता है कि मैं कल से भगवान कृष्ण का नाम जपूंगा, महामंत्र जपूंगा, यह सोच लेता है, वह सोचने मात्र से उनके हृदय के समस्त पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। तब उस सभा में कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और वह भक्त जिसका जन्म मुसलमान परिवार में परंतु वह कृष्ण के भक्त और उनका नाम था हरिदास ठाकुर, जो हरि के दास थे, कृष्ण के दास थे। एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तब हरिदास ठाकुर ने कहा कि मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, शास्त्र में लिखा है। तब वो व्यक्ति ने हरिदास ठाकुर का अपमान किया, अपराध किया, अरे तुम क्या जानो, मुसलमान परिवार में जन्म लिए हो, तुम शास्त्र को नहीं जानते हो, ये शास्त्रों में भगवान के नाम की जो महिमा लिखी है वो बड़ा चढ़ाकर लिखी है, शास्त्र में भगवान के नाम की जितनी महिमा है उनका प्रभाव उतना वास्तव में नहीं है। उस भरी सभा में हरिदास ठाकुर को अपमानित किया और उस समय हरिदास ठाकुर भगवान के भक्त थे, कुछ नहीं बोले। और दूसरे दिन सुबह जिस व्यक्ति ने हरिदास ठाकुर का अपराध किया था उसकी जो नाक थी बस पूरी नाक गिर गई, सड़ गई। तब उसे पता चला कि मुझसे अपराध हो गया है। वह दौड़ते दौड़ते हरिदास ठाकुर के पास आया क्षमा याचना की। हरिदास ठाकुर ने उसे आलिंगन किया, तब उसकी नाक जैसी थी वैसे हो गई। कहने का तात्पर्य यह है, कभी भी किसी भक्त का अपराध नहीं करना चाहिए। कौन भक्त कितना बड़ा है, भक्ति में कितना आगे है, यह बाहर से पता नहीं चलता है। और हमारे भारतवर्ष में ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे कृष्ण के भक्त हुए और मुसलमान परिवार में भक्त हुए जिस पर हजारों हिंदुओं को कुर्बान किया जा सकता है। जैसे रस खान, हमारे ब्रज में एक भक्त हो गए रस खान, वास्तव में वे भक्ति के रस की खान थे। बेजू बावरा, बहुत सारे भक्त कृष्ण के, उनमें से एक थे हरिदास ठाकुर। संतों का कहना है कि हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी के अवतार थे। द्वापर युग की लीला में ब्रह्मा जी ने कृष्ण का अपराध किया था और उस अपराध के फल स्वरूप ब्रह्मा जी ने कलयुग में हरिदास ठाकुर के रूप में मुसलमान परिवार में जन्म लिया। परंतु जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। और हरिदास ठाकुर के विषय में आया है कि वे एक दिन में 300,000 नाम जप करते थे। 100,000 नाम जप मन ही मन करते थे, 200,000 नाम जप धीरे धीरे, और 300,000 100,000 नाम जप वे उच्च स्वर से करते थे। जब ये हरिदास ठाकुर 300,000 नाम जप करते थे, अलग अलग गांवों में प्रचार करते थे, तब मुसलमान लोगों को यह बात पता चली कि ये हरिदास का जन्म तो मुसलमान परिवार में हुआ है और ये मुसलमान का जो धर्म होता है कलमा पढ़ना, इसे छोड़कर ये कृष्ण का नाम ले रहा है। तब राजा की सभा में, उस मुसलमान राजा की सभा में हरिदास ठाकुर को बुलाया गया और हरिदास ठाकुर को कहा गया कि तुम्हारा जन्म मुसलमान परिवार में हुआ है, फिर भी कृष्ण का नाम क्यों लेते हो। हरिदास ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, मुझे अल्लाह और कृष्ण में कोई भेद नहीं दिख रहा है, मेरे लिए तो अल्लाह भी एक है, कृष्ण भी एक है, आपको उनमें भेद लग रहा है। बोले कृष्ण का नाम लेना छोड़ दो। हरिदास ने कहा कृष्ण का नाम नहीं छूटेगा। बोले यदि कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ोगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा। हरिदास ठाकुर ने कहा मंजूर है, परंतु कृष्ण का नाम नहीं छूटेगा। तब उस राजा ने हरिदास ठाकुर को सजा दी, 4-4 जल्लादों को बुलाया और कहा कि इसे 21 बाजार में पीटा जाए, कोड़े से और चाबुक से इसे पीटा जाए, ताकि गांव वाले भी देखे कि अपना मजहब छोड़कर, अपना मुसलमान धर्म छोड़कर हिंदू धर्म स्वीकार करने वाले की क्या स्थिति होती है। हरिदास ठाकुर को 21 बाजार में लेकर गए, उस जल्लादों के हाथों से पीटा गया। वह चाबुक के द्वारा, उस हंटर के द्वारा हरिदास ठाकुर को मारते थे और मारते मारते कहते थे हरिदास कृष्ण का नाम लेना छोड़ दे। परंतु हरिदास को जितना मारा जाता था उतनी बार कृष्ण का नाम में लिया करते थे। 21 बाजार में मारने का अर्थ किसी गांव में ले जा करके एक बाजार में खड़े रखना, पूरे गांव वालों को बुलाना और इतना मारना, इतना पीटना जब तक वह मूर्छित न हो जाए। जब वह मूर्छित हो जाए तब दूसरी बाजार में लेकर जाना, फिर से मारना। ऐसे 21 बाजार में हरिदास ठाकुर को मारा गया। और कहा गया कि कृष्ण का नाम लेना छोड़ दो, परंतु हरिदास अंत में चारों जल्लाद 21 बाजार में हरिदास को इतना मारे, मारते मारते उनका हाथ थक गया और वो चारों जल्लाद कहते हैं, हरिदास अब तो कृष्ण का नाम लेना छोड़ो, अब तो महामंत्र लेना बंद करो। तब हरिदास ठाकुर कहते हैं, खंड खंड होई जदि ये तन प्राण, अरे तुम मार मार कर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, परंतु यह हरिदास कृष्ण का नाम लेना कभी नहीं छोड़ेगा। ताबू ना भजने आमी ना छाड़ीबू हरि नाम, यदि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए परंतु कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, मरने के लिए तैयार हैं परंतु कृष्ण का नाम लेना नहीं छोड़ते। ऐसे हरिदास ठाकुर हमारी परंपरा में, ये हरिदास ठाकुर हमारे लिए आदर्श है। हरिदास ठाकुर को नामाचार्य कहा जाता है, जो नाम के आचार्य है। कहने का तात्पर्य यही है, भगवान के भक्तों का जो अपराध करता है निश्चित उसे सजा मिलती है। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के चतुर्थ अध्याय में अम्बरीश महाराज की कथा आती है। एक बार अम्बरीश महाराज, जो पूरे भारत के राजा थे, परंतु फिर भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते थे। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वांचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, अपना मन बुद्धि इंद्रिय हाथ पैर नेत्र कर्ण ये सब कुछ भगवान की भक्ति में लगाए थे। एक दिन की बात, एकादशी का समय था। अम्बरीश महाराज ने एकादशी व्रत का पालन किया और दूसरे दिन द्वादशी थी। एकादशी की जितनी महिमा है उतनी ही महिमा पारण करने की है। ये पारण का समय जो है निश्चित किया गया है, 6 बजे से 8 बजे या 7 बजे से 10 बजे तक। जिस क्षेत्र में पारण करने का जो समय निश्चित किया गया है उस समय में पारण करने से ही एकादशी का फल पूर्ण रूप से मिलता है। अम्बरीश महाराज पारण करने के लिए बैठे, उसी समय एक बहुत बड़े संत जिसका नाम दुर्वासा ऋषि था, दुर्वासा ऋषि अम्बरीश महाराज के राज्य में आए और अम्बरीश महाराज को कहा, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए भोजन तैयार करो, मैं स्नान करके अभी अभी वापस आ रहा हूं। दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए और यहां पर अम्बरीश महाराज दुर्वासा ऋषि का भोजन तैयार करके उनकी राह देख रहे हैं, परंतु उसी समय पारण का समय बीता जा रहा है। महाराज अम्बरीश धर्म संकट में फंस गए। यदि दुर्वासा ऋषि के आने की राह देखें तो पारण का समय चला जाए, एकादशी व्रत का पूरा पूरा फल न मिले, और यदि पारण कर ले भोजन कर ले तो दुर्वासा ऋषि दुखी हो जाएंगे, क्या किया जाए। तब राजा अम्बरीश ने अन्य साधु संतों को पूछा, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तब अन्य साधुओं ने कहा, एक काम कीजिए, आप पानी पी लीजिए, क्योंकि पानी पीने से पारण भी हो जाएगा और पानी जो है वो भोजन नहीं माना जाता है, दोनों बात रह जाएगी। संतों के कहने पर महाराज अम्बरीश ने जल ग्रहण किया और कुछ समय के बाद दुर्वासा ऋषि आए आकर देखा तो अमरीश महाराज पानी पी लिए थे, और अमरीश महाराज पानी पी लिए यह पता चलते ही दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए। यद्यपि क्रोध करने का कोई कारण नहीं था, अब पानी पी लिया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है। परंतु कुछ लोग का स्वभाव होता है, स्वभाव से मजबूर होते हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, और उसी समय दुर्वासा ऋषि अपने मस्तक से एक जटा को निकाले और उस जटा को पृथ्वी पर पटके और उस जटा से कृत्या को उत्पन्न किया, राक्षसी को उत्पन्न किया, और इस कृत्या को आदेश दिया कि इस अम्बरीश का वध कर दो। वह कृत्या हाथ में तलवार लेकर अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। दौड़ते दौड़ते वह कृत्या अम्बरीश महाराज की ओर आ रही है। वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न चचाल भू, हाथ में तलवार लेकर वह कृत्या मारने के लिए आ रही है, परंतु अम्बरीश महाराज को भगवान श्री कृष्ण में इतना विश्वास है कि एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं। वे खड़े हैं और वह कृत्या मारने के लिए आ रही है। अम्बरीश महाराज भगवान की शरण में है, भगवान के परम भक्त है, और अम्बरीश महाराज की भक्ति को देखकर जैसे ही कृत्या अम्बरीश के पास आई, उसी समय भगवान से विष्णु का सुदर्शन चक्र वहां प्रकट हुआ। सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ, सबसे पहले सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का वध किया, जलकर राख हो गई। फिर वह सुदर्शन चक्र जिसने कृत्या को प्रकट किया था, वह दुर्वासा ऋषि के पीछे दौड़ा। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया कि यह सुदर्शन चक्र वैष्णव अपराध करने के कारण मेरे पीछे पीछे आ रहा है, दौड़ने लगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, दुर्वासा ऋषि अनेक स्थानों पर गए, ब्रह्मलोक में चले गए, ब्रह्मा जी के पास, हे ब्रह्मा जी आप मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने टके से जवाब दे दिया, दुर्वासा जी आपने एक भक्त का अपराध किया है, आपने भक्त अम्बरीश को मारने की कोशिश की है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं, और मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं कि तुम जल्दी ब्रह्मलोक को छोड़कर भागो, नहीं तो इस सुदर्शन के तेज से मेरा ब्रह्मलोक जलकर राख हो जाएगा। दुर्वासा जी वहां से भागे, समुद्र दसों दिशा में घूमे, कहीं शरण नहीं मिली। अंत में कैलाश में गए शिव जी के पास, हे देवाधिदेव महादेव इस सुदर्शन से आप मेरी रक्षा कीजिए। शिव जी भी यही कहते हैं कि आपने वैष्णव अपराध किया है और इसी के कारण यह सुदर्शन चक्र आपके पीछे है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा जी कहते हैं, तब क्या करूं। शिव जी ने बहुत सुंदर बात बताई, देखो ये सुदर्शन जिसका है उनके पास जाओ, वे ही आपकी रक्षा कर सकता है। सुदर्शन भगवान विष्णु का था। उसी समय दुर्वासा ऋषि उस कैलाश लोक को छोड़कर वैकुंठ में गए। वैकुंठ में भगवान विष्णु विराजे थे। दुर्वासा ऋषि आए, प्रणाम किए कि हे प्रभु कृपया करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान विष्णु दुर्वासा जी से कहते हैं, दुर्वासा जी आप क्या चाहते हो, मैं आपकी रक्षा करूं। भगवान ने कहा कि दुर्वासा जी मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं, यदि तुमने मेरा अपराध किया होता तो मैं तुम्हें कभी का क्षमा कर दिया होता। भागवत में भी आया है, हरो रुष्टे गुरु स्यात्रा, यदि हरि रुठ जाए तो गुरु की शरण ग्रहण करके हरि को मना सकते हैं, परंतु गुरु रुष्टे न कश्चन, परंतु गुरु या वैष्णव या भक्त संत यदि रुठ जाए तो उसे भगवान भी नहीं मना सकते हैं। भगवान भी एक वैष्णव अपराध से किसी को मुक्त नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा जी ने कहा, प्रभु आपको दया नहीं आ रही है मुझ पर, आप तो हे कृष्ण करुणा सिंधु करुणा के सागर हो, क्या आपको मुझ पर दया नहीं आ रही है? तब भगवान ने दुर्वासा को इतना ही कहा कि दुर्वासा जी, मेरे भक्त मेरे हृदय है, साधव हृदय मह्यम, साधु जो है मेरे हृदय में रहते हैं, और दुर्वासा जी आपने अम्बरीश को मारने का प्रयास किया है, अम्बरीश को नहीं आपने मेरे हृदय को जला दिया है। और ये जो दया जो है हृदय से उत्पन्न होती है, करुणा हृदय से उत्पन्न होती है, जिस हृदय से दया और करुणा उत्पन्न होती है उस हृदय को तो आपने जला दिया, और आप कहते हो आप मेरी रक्षा करो। मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं क्योंकि अहम भक्त पराधीन, क्योंकि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं, मैं मेरे भक्तों का सेवक हूं। तब मेरी रक्षा कैसे होगी? अंत में भगवान कहते हैं कि दुर्वासा जी, यदि आप अपनी रक्षा चाहते हो तो आपने जिसका अपराध किया है उनकी शरण में जाओ, वे चाहे तो इस दुख से आपको मुक्त कर सकते हैं। तब दुर्वासा जी दौड़ते दौड़ते महाराज अम्बरीश के पास आए। दुर्वासा ऋषि जब अम्बरीश महाराज से दौड़कर निकले थे शिव जी के पास, ब्रह्मा के पास, वैकुंठ में, ये सब जगह पर घूमते घूमते एक साल बीत गया था, और महाराज अम्बरीश इतने महान भक्त थे कि एक साल तक दुर्वासा ऋषि के आने की राह देखे, एक साल तक भोजन भी नहीं किया और पानी भी नहीं पिया। जब दुर्वासा ऋषि आए और आकर अम्बरीश महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, अम्बरीश महाराज ने उठा लिया, कहा आप हमें क्यों प्रणाम कर रहे हैं? बोले क्षमा कर दीजिए, चक्र मेरे पीछे दौड़ रहा है। उस समय अम्बरीश महाराज कहते हैं कि यदि मैंने मेरे जीवन में वास्तविक भक्ति की है, यदि मैंने मेरे जीवन में स्वप्न में भी किसी से दोष और द्रोह नहीं किया है तो यह सुदर्शन चक्र वापस चला जाए। इतना कहते ही वह सुदर्शन चक्र वापस चला गया, और श्रीमद् भागवत में वह दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि आज हमें पता चला, आज मुझे पता चला कि विष्णु कृष्ण के भक्त की क्या महिमा है। आज तक मैं नहीं जानता था कि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ परब्रह्म ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ क्यों चलाते हैं। 2000 की नौकरी करने वाले ड्राइवर भगवान क्यों बन जाते हैं, आज तक मुझे पता नहीं था, परंतु आज पता चला कि कृष्ण उनके भक्त की सेवा क्यों करते हैं, क्योंकि वैष्णव का स्वभाव बहुत अद्भुत होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में कभी भी हमसे किसी वैष्णव को, किसी भक्त को दुख न पहुंचे, यह ध्यान रखना है, नहीं तो यह अपराध माना जाएगा और यह अपराध का शमन होना बहुत मुश्किल है। यहां पर जय और विजय ने ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादिको का अपराध किया, और सनकादिको का अपराध करने के कारण जय और विजय को असुर बनना पड़ा। उनका प्रथम जन्म हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु के रूप में हुआ। हिरणाक्ष की कथा तो आप लोगों ने कल सुन ली, किस प्रकार से भगवान वराह के द्वारा उनका वध हुआ। जब हिरणाक्ष का वध हो गया, ये हिरणाक्ष हिरणाकश्यपु का बड़ा भाई था, जब बड़े भाई का वध हो गया तो छोटे भाई ने देखा कि ये विष्णु हमारा वध कर रहा है, और विष्णु को मारने के लिए सबसे पहले शक्तिमान बनना होगा, क्योंकि विष्णु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तब शक्ति प्राप्त करने के लिए हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए सोच रहा है। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हिरण्यकश्यपु राजन अजेय जरामरम आत्मानम अप्रतिद्वंद्वम एक राट व्यधित सतः। हे राजन, हिरण्यकश्यपु अजेय अजर अमर एक छत्र राज प्राप्त करने के लिए और इस संसार में उनका कोई प्रतिद्वंद न करे ऐसा बनने के लिए तपस्या करने के लिए सोचा। और तपस्या करने कहां गया? स तेपे मंदर द्रोण्याम तपह परम दारुणाम। हिरण्यकश्यपु मंदार पर्वत के ऊपर तपस्या करने के लिए गया और तपस्या किस प्रकार से प्रारंभ की? कहते हैं, ऊर्ध्व बाहु नवो दृष्टि पादांगुष्ठा श्रितावनी। उस मंदार पर्वत के ऊपर जाकर अपनी दोनों भुजा ऊपर करके नवो दृष्टि अपनी दृष्टि अपनी आंखें नभ की ओर रखकर और पृथ्वी के ऊपर मात्र अंगूठे के ऊपर खड़े रहकर हिरण्यकश्यपु ने तपस्या प्रारंभ की। न भोजन करना है न पानी पीना है। अनेक वर्षों तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की और तपस्या करने के कारण जटा आदि तिभी रेजे संवार तक इवाम शुभी। हिरण्यकश्यपु की तपस्या को देखकर देवतागण प्रकट हो गए कि यह असुर तपस्या करने चला है, न जाने अब क्या करेगा। परंतु देखा कि बिना भोजन पानी कि यह तपस्या कर रहा है, निश्चित यह यहीं पर मर जाएगा। यह सोचकर देवतागण अपने धाम में चले गए। परंतु हिरण्यकश्यपु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कहते हैं कि हजारों हजारों वर्ष तक 36,500 वर्ष तक हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की और 36,500 वर्ष तक तपस्या करने से हिरण्यकश्यपु के शरीर से अग्नि प्रकट हुई। तस्य मूर्त समुद्भूत सधूमो अग्नि तपोमय। अग्नि बहुत प्रकार की होती है। ये जो अग्नि थी तपोमय, दूसरों को कष्ट देने वाली अग्नि थी। और सधूमो धुएं के साथ यह अग्नि प्रकट हुई और यह अग्नि तिर्यग, तिर्यग माने तिरछे, तिरछी दिशाओं में सभी दिशाओं में फैलने लगी। अधलोकान ऊर्ध्व लोकान नीचे के लोकों में और ऊर्ध्व ऊपर के लोकों में दसों दिशा में हिरण्यकश्यपु के शरीर से निकली हुई अग्नि जाने लगी और वह अग्नि संसार के सभी लोगों को तपाने लगी, दुखी करने लगी। संसार के महल घर इत्यादि सब जलने लगे और धीरे धीरे ये अग्नि जनलोक महरलोक तपलोक स्वर्ग लोक में पहुंची। देवताओं के स्वर्ग में आग लगने लगी। तब समस्त देवता, देवलोक से ऊपर का लोक है ब्रह्मलोक, समस्त देवता ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये हिरण्यकश्यपु तपस्या कर रहा है और उसकी तपस्या से सब लोग दुखी हैं। इस संसार में संत साधु महात्मा भी तपस्या करते हैं और असुर गण भी तपस्या करते हैं। ये दोनों की तपस्या में अंतर क्या है? ये असुरगण जब तपस्या करते हैं तो उनकी तपस्या दूसरों को दुखी करने के लिए होती है। असुरों की तपस्या दूसरों को दुखी करने के लिए होती है, परंतु महात्माओं की तपस्या इस संसार के लोगों को सुखी करने के लिए होती है। उनके मन में यही भाव होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे संतु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, यह है संतों की तपस्या। और असुरों की तपस्या के द्वारा सब लोग दुखी होते हैं। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया, सब लोग दुखी हुए और सभी लोक के लोकपाल देवतागण ब्रह्मा जी के पास गए। कहा, ब्रह्मा जी, हिरण्याकश्यप की तपस्या से सभी लोकों में आग लग गई है, आप इससे हमारी रक्षा कीजिए। परंतु ब्रह्मा जी ने इतना ध्यान नहीं दिया। तब देवताओं ने कहा, ब्रह्मा जी, आप जानते हो हिरण्याकश्यप क्यों तपस्या कर रहा है? हिरण्याकश्यप तपस्या करके ब्रह्मलोक का राजा बनना चाहता है। ब्रह्मा जी, अब आपकी कुर्सी खतरे में है, यदि आप कुछ नहीं करोगे तो यह हिरण्याकश्यप ब्रह्मलोक में पहुंच जाएगा। एक राट व्यधित सतह। जब ब्रह्मा जी ने यह सुना कि अरे बाप रे, ये आपत्ति मेरे सिर पर आएगी, तब ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया। अच्छा, यह हिरण्याकश्यप कहां तपस्या कर रहा है? कहा, मंदार पर्वत के ऊपर। तब हिरण्याकश्यप की तपस्या को बंद कराने के लिए ब्रह्मा जी अपने पुत्र भृगु इत्यादि को लेकर मंदार पर्वत पर आए। आकर ब्रह्मा जी ने हिरण्याकश्यप को ढूंढा, परंतु मिला ही नहीं। ब्रह्मा जी ने बहुत ढूंढा, कहां है ये हिरण्याकश्यप? क्योंकि हिरण्याकश्यप का शरीर इतने 36,500 वर्ष से तपस्या करने के कारण कीड़े मकोड़े के द्वारा वह शरीर खा लिया गया था, मात्र हिरण्याकश्यप की हड्डी बची थी, देह उनका खा लिया गया था कीड़ों के द्वारा, और उस पर बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर जम चुका था। हिरण्याकश्यप के प्राण हड्डियों में बचे थे। ब्रह्मा जी ने बहुत ढूंढा, मिला नहीं। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से हाथ में जल लिया और जल लेकर जैसे ही छिड़का तो उस मिट्टी के ढेर के नीचे से हिरण्याकश्यप प्रकट हुआ। वैसे तो हिरण्याकश्यप तपस्या करके अपने शरीर को पूरा गाल दिया था, मात्र हड्डी बची थी, परंतु उस गंगा नदी के जल के छिड़काव से और ब्रह्मा जी के मंत्र से हिरण्याकश्यप का शरीर फिर से जैसा था वैसे हो गया। और कुछ संत तो कहते हैं कि पहले से भी हिरण्याकश्यप का शरीर कठोर हो गया। विव्रत हेम मयम वपु, भागवत में आया है, हिरण्याकश्यप का शरीर हेममयी सोने के समान और वज्र के समान कठोर हो गया, मजबूत हो गया। तपस्या करने से शरीर मजबूत होता है। हिरण्याकश्यप का शरीर जब ठीक हुआ तब ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यप से कहते हैं, उत्तिष्ठ तिष्ठ भद्रम ते तपस्सिद्ध्यति काश्यप। हे काश्यप, हे कश्यप के पुत्र हिरण्याकश्यप, ते भद्रम, तुम्हारा भद्र हो, तुम्हारा मंगल हो, आशीर्वाद देते हैं, मंगलमस्तु, तुम्हारा मंगल हो। ते तप सिद्ध असी, तुम्हारा जो तप है, तुम्हारी जो तपस्या है, ये सिद्ध हो चुकी है, अब तुम्हारी तपस्या समाप्त तो हुई, इसलिए उत्तिष्ठ तिष्ठ, इसलिए अब आप खड़े हो जाओ। वरदो अहम अनुप्राप्तो, हे हिरण्याकश्यप, मैं तुम्हें वरदान देने के लिए आया हूं। व्रियताम इप्सितो वरह, तुम्हारी जो भी इच्छा हो, तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा, प्रभु आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए, कैसे? ब्रह्मा जी कहते हैं, नेतत्व पूर्व चक्रुर्ण करिष्यन्ति चा परे। हिरण्यकश्यप, क्या बताऊं, तुमने जो तपस्या की है ऐसी तपस्या न एतत् पूर्वम, इसके पहले ऐसी तपस्या किसी ने नहीं की, और न अपरे, और भविष्य में भी तुम जैसी तपस्या कोई नहीं करेगा। इसलिए हे दीति नंदन, हे दीति के पुत्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हें जो चाहिए वो मुझसे मांग लो। जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप को कहा जो चाहिए वो मांग लो, तब हिरण्यकश्यप कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि दास्यस अभिमतान वरान में वरदोत्तम मृत्युर्मा भून ममह प्रभो, यदि आपको मुझे वरदान देना ही है तो मुझे अमर कर दो। आप मुझे ऐसा वरदान दो कि जिससे मैं कभी न मरूं, मेरी मृत्यु कभी भी न हो। तब ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप से कहते हैं कि हे काश्यप, हे दीदि नंदन, तुम अमर होने का वरदान मांग रहे हो, क्या बताऊं, मैं भी अमर नहीं हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं भी अमर नहीं हूं तो तुम्हें कैसे अमर कर सकता हूं? अब जेब में 100 रुपया नहीं है तो दूसरे को 1000 कैसे दे सकते हैं? ब्रह्मा जी स्वयं अमर नहीं है तो हिरण्यकश्यप को कैसे अमर कर सकते हैं? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, आ ब्रह्म भुवनालोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवनालोकान, ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं, ये सभी लोक में रहने वाले एक ना एक दिन मरते हैं, मरना पड़ता है। ब्रह्म लोक तक ब्रह्मा को भी एक ना एक दिन मरना पड़ता है। आ ब्रह्म भुवनालोकान, परंतु यदि कोई व्यक्ति मामु पेत्य तु कौन्तेय, यदि कोई व्यक्ति मेरी भक्ति करके मेरे धाम में आ जाता है तो पुनर्जन्म न विद्यते, उस व्यक्ति का कभी फिर से जन्म नहीं होता है, वो नित्य नित्य सदा सदा के लिए मेरे पास आ जाता है। यह है कृष्ण की भक्ति। अन्य देवता भी ब्रह्मा तक, ये इंद्र की बात छोड़ दीजिए, ब्रह्मा तक सभी देवताओं को मरना पड़ता है, परंतु यदि कोई कृष्ण की भक्ति कर लेता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसे फिर से इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार माता के गर्भ में आना नहीं पड़ता है, और माता के गर्भ से जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये दुख नहीं भोगतना पड़ता है जो लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हिरण्यकश्यप, अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुम्हें कैसे कर सकता, और जो भी चाहिए वो मांग लो। तब हिरण्यकश्यप कहते हैं, ठीक है, आप मुझे अमर नहीं कर सकते हो तो मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे दे दो। क्या दो? बोले, न अंतर न बहिर, आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मुझे अंदर कोई न मार सके, बाहर कोई न मार सके, न ऊपर न नीचे, न मैं ऊपर मरू न नीचे मरू, न दीवा न दिन को मरू न रात को मरू, न सुबह मरू न शाम को मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न तो कोई मुझे मनुष्य मार सके न तो कोई पशु मार सके, ऐसा वरदान दे दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, तथा अस्तु, तुमने जैसा बोला है वैसा ही होगा। बताइए, अब हिरण्यकश्यप को अमर होने में क्या बाकी रहा? एक और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अमर नहीं कर सकता हूँ, और एक और ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया कि न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न दिन को, न रात को, न अंदर, न बाहर, न ऊपर, न नीचे, न मनुष्य से, न पशु से। बताइए इस देवता को कौन मार सकता है? ऑलमोस्ट अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया ब्रह्मा जी से। और ऐसा वरदान प्राप्त करके हिरण्यकश्यपु ने क्या किया? एक तो असुर था ही, और ऊपर से ब्रह्मा जी का वरदान मिला। पता है ना, एक तो बंदर, बंदर अपने स्वभाव से ही चंचल होते हैं, और ऊपर से उस बंदर को शराब पिलाया जाए तब तो वह उत्पात के अलावा कुछ नहीं करता। हिरण्यकश्यपु आसुरी स्वभाव का असुर था, और ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिला। एवं लब्ध वरो देत्यो विप्रद हेम वयम वपु भगवती अकरो द्वेषम भ्रातुर वद अनुस्मरण। जब हिरण्यकश्यपु वरदान प्राप्त किया, तुरंत हिरण्यकश्यपु को अपने बड़े भाई हिरण्याक्ष की याद आई। याद आई कि विष्णु ने हिरण्याक्ष को मारा है, इसलिए बस अब मुझे विष्णु को मारना है, और विष्णु को मारने के लिए इस संसार में सबसे पहले विष्णु के जो भक्त हैं उसका पहले नाश करना है। तब हिरण्यकश्यपु ने अत्याचार प्रारंभ किया। इस संसार में जितने भी साधु संत महात्मा, जितने भी लोग थे, हिरण्यकश्यपु ने एक नियम बनाया। सबसे पहले तो हिरण्यकश्यपु ये तीनों लोगों का राजा बन गया। इस पृथ्वी में जितने भी राजा थे, ये सभी राजा महाराजाओं के साथ युद्ध किया। प्रायः सभी राजा महाराजा हिरण्यकश्यपु के चरणों में गिर जाते थे, और जो राजा हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध करना चाहता तो सबसे पहले हिरण्यकश्यपु कहता, रुकिए रुकिए, युद्ध बाद में करना। ब्रह्मा जी ने जो आशीर्वाद दिया है, जो एग्रीमेंट, पहले वो पढ़ाता। देखो ये ब्रह्मा जी ने एग्रीमेंट दिया है मुझे, न दिन को मरे, न रात को, न सुबह, न शाम, न ऊपर, न नीचे से, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मनुष्य से, न पशु से। ये एग्रीमेंट को ब्रह्मा जी, और नीचे लिखा था ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी की साइन। ब्रह्मा जी के इस एग्रीमेंट को पढ़कर ही बड़े बड़े राजा महाराजा हिरण्यकश्यपु के चरणों में आ जाते थे। इस देवता को कौन मार सकता है? इससे पंगा लेना तो मृत्यु को आमंत्रण देना है। छोड़ो छोड़ो। इस प्रकार हिरण्यकश्यपु वह ब्रह्मा जी का वरदान साथ में रखता था, और न केवल पृथ्वी अपितु अध और ऊर्ध्व तीनों लोकों को जीत लिया। आगे आया है, जीते त्वये केन जगत त्रयम विवो। या विवो या हिरण्यकश्यपु ने तीनों लोकों को जीत लिया था, यहां तक देवी देवताओं को भी अपना नौकर बना दिया था। जब भगवान नरसिंह देव हिरण्यकश्यपु का वध करेंगे, तब ये कुबेर इंद्र सब आएंगे भगवान के पास और प्रार्थना करेंगे, प्रभु अच्छा किया आपने हिरण्यकश्यपु को मार दिया, बेचारा हमसे झाड़ू लगवाता था अपने राज्य में। ये कुबेर कहता था, कुबेर जी ने कहा है आगे कि हमने कभी पोता नहीं मारा, कपड़ा नहीं लगाया, परंतु हिरण्यकश्यपु अपने महल में हमसे पोता लगवाता था, हमसे काम कराता था, अच्छा हुआ आपने मार दिया। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करके इतना शक्तिशाली हुआ। कहते हैं, जीते त्वये केन जगत त्रयम विभो। हिरण्यकश्यपु अपनी आंखें तिरछी करता था, अपनी भौं तरेरता था, ये 33 करोड़ देवी देवता उनके चरणों में आकर गिर जाते थे। यहां तक 2400 घंटा अपनी वीणा पर नारायण का नाम लेने वाले नारद मुनि भी हिरण्यकश्यपु के सामने आते थे तो यही कहते थे, हिरण्यकश्यपु महाराज की, आप लोग क्यों बोल रहे हैं? लेकिन बोलना ठीक है, क्योंकि आखिर तो भगवान का पार्षद ही है। नारद मुनि भी हिरण्याकश्यपु की प्रशंसा करने लगते। इस प्रकार हिरण्याकश्यपु तीनों लोगों पर विजय प्राप्त किया। और फिर हिरण्याकश्यपु ने एक नियम बनाया। नियम क्या था? इस संसार में जो लोग ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, ये सब लोगों को भोजन पानी बंद, और जो डाका डालते हैं, चोरी करते हैं, मांस खाते हैं, ये सब के लिए सब्सिडी और मुफ्त में बहुत बड़ा महल और भोजन पानी फ्री दिया जाएगा। पाखंड करने वाले को, चोरी करने वाले को, सबको राशन मुफ्त में मिलेगा, सबको रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बहुत सुंदर भोजन और एक एक बंगला रहने के लिए, और भजन करने वाले को भोजन नहीं मिलेगा। ये हिरण्याकश्यपु का आदेश, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। और हिरण्याकश्यपु वृक्षों को आदेश देता था, वृक्ष को धमका कर कहता था कि देखो 12 महीने में आम देना है। ये आम के जो वृक्ष है ना, उसको धमकी देकर कहता था 12 महीने आम देना है, नहीं तो सब को काट डालूंगा। ये आम, आम के वृक्ष एक साल में 2 या 3 महीने ही आम देते हैं, परंतु हिरण्याकश्यपु के पाखंड से ये आम के वृक्ष 12 महीना आम देने लगे। साल में एक बार खेती होती है, परंतु हिरण्याकश्यपु के भय के कारण वह खेत में साल में 10 बार होने लगी फसल। और इसी के कारण आगे चलकर यह खेत, वृक्ष और ये वर्षा, यह पानी आना बंद हो गया। तो इस प्रकार हिरण्याकश्यपु अपना पाखंड अत्याचार करने लगा, और अपना अत्याचार सभी और सभी दिशाओं में फैलाने लगा, और देवताओं से युद्ध करके हिरण्याकश्यपु स्वर्ग को भी अपने हाथ में ले लिया, इंद्र के आसन के ऊपर बैठ गया। और जब हिरण्याकश्यपु अब पृथ्वी पर नहीं रहता था, अब हिरण्याकश्यपु स्वर्ग में रहता था, क्योंकि देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से। और स्वर्ग में रहकर क्या करता था, क्या करता था? तमंग मत्तम मधुनोरु गंधिना विवृत ताम्रा क्षमशेष धिष्णपा। स्वर्ग में रहकर हिरण्याकश्यपु उरु गंधिना, बहुत उग्र गंध वाली शराब पीता था, जिसके पास जरूरत से ज्यादा धन आ जाता है वह फिर शराब पीते हैं, उरु गंध वाली, बहुत गंध, जिस शराब से बहुत गंध आती थी ऐसी शराब पीता। इससे यह पता चलता है कि हिरण्याकश्यपु के पास धन की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हिरण्याकश्यपु का अर्थ होता है, हिरण्य का अर्थ होता है सोना, और कश्यपु का अर्थ होता है बिस्तर। जो सोने के बिस्तर के ऊपर सोता था, अर्थात जिसका बिस्तर भी सोने से बना था, अर्थात जो बहुत धनी था, जो बहुत धनी है, उसे हिरण्याकश्यपु कहा जाता है। बहुत धनी था, और धनी था इसलिए सबसे महंगी शराब पीता होगा। अब हमने तो कभी पी नहीं है, परंतु भागवत से इतना तो हम निर्णय ले सकते हैं कि हिरण्याकश्यपु जो शराब पीता था उसमें उरु गंधिना, बहुत गंध आती थी। इसका अर्थ यह है कि जितनी महंगी शराब होती है उतना ज्यादा गंध आता है, इससे यह आइडिया आता है। एक बार एक व्यक्ति शराब की कंपनी में काम करता था, वो हमारे प्रवचन में आया, और प्रवचन के बाद हमसे मिला। मैंने कहा क्या करते? बोले शराब की कंपनी में काम करते। तभी मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था, तो मैंने पूछा शराब कैसी होती है, कितने की होती है? बोले शराब 5 रुपए से लेकर 5 लाख तक मिलती है। बोला 5 रुपए में और 5 लाख में अंतर क्या होता है? बोले शराब जब पुरानी हो जाती है और उसमें भी एक्सपायरी डेट हो जाती है तब वो शराब ब्लैक में बिकती है। शराब जितनी पुरानी होती है उतना उसका दाम ज्यादा होता है। तब मुझे पता चला हाँ भागवत से मिलता जुलता आ रहा है सर। उरुगंधिना बहुत गंध वाली शराब पीता था और ये शराब पीकर कहते हैं उनकी आंखें लाल लाल हो जाती थी और शराब के नशे में मदमस्त हो जाता था। देखिए शराब पीने का काम असुरों का है, देवता लोग कभी शराब नहीं पीते हैं। देवता लोग सोम रस पीते हैं। कुछ लोगों के मन में ये भ्रम है सोम रस का अर्थ है शराब, नहीं, सोम रस का अर्थ शराब नहीं होता है। कभी कभी कुछ शराब पीने वाले भी कहते हैं, हम कहते हैं ये क्या कर रहे हो, तो वह शराब पीने वाला कहता है मैं सोम रस पी रहा हूं। ये सोम रस का अर्थ शराब नहीं है, सोम रस का अर्थ होता है स्वर्ग में बहुत सुंदर सुंदर फ्रूट होते हैं फल, उस फल के जूस को सोम रस कहा जाता है। देवता लोग फल का जूस पीते हैं परंतु असुर लोग फल का ही जूस पीते हैं परंतु उस फल को सड़ाकर जब बहुत गंध आ जाती है तो शराब के रूप में पीते हैं। ये शराब पीने का काम असुरों का है, मनुष्य का नहीं है। इसलिए मनुष्य को कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए और यदि कोई मनुष्य शराब पीता है तो मरने के बाद यमराज जी उसे आई पान नाम के नरक में डालते हैं। शराब पीने वाले को बहुत दंडित किया जाता है, बहुत सजा दी जाती है। कहते इस संसार में जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे यमराज जी वैसे नरक में डालते हैं। शराब पीने वाले को आईपान नाम के नरक में और उस नरक में यहां इस पृथ्वी पर व्यक्ति जितना लीटर शराब पीता है, केवल शराब ही नहीं, चाय कॉफी गुटखा तंबाकू ये जितना रस ये सब का पिया है उसका हिसाब किताब भगवान के पास होता है कि इस व्यक्ति ने इतना खैनी का रस पिया है, 500 लीटर खैनी का रस पिया है, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में 1500 लीटर चाय पिया है। ये चित्रगुप्त के किताब में ये सारा लेखा जोखा होता है। और वहां पर फिर जिसने जितना शराब पिया है, चाय कॉफी पिया है या गुटखा तंबाकू सिगरेट गांजा सब का हिसाब किताब होता है और उसकी बहुत भयंकर सजा होती है, बहुत दंडित किया जाता है, दुखी किया जाता है। उनके मुख में गरम गरम लोहे का शीशे का रस डाला जाता है। तो इस प्रकार शराब पीने का काम असुरों का है। हिरण्याकश्यपु शराब पीता था और हिरण्याकश्यपु के आतंक के कारण ये सभी देवता दुखी हो गए। हिरण्याकश्यपु ने सभी देवी देवताओं को अपने महल में जेल में बंद करके रखा था और ये सभी देवता हिरण्याकश्यपु के महल में बंधे हुए थे और बंधे बंधे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु तस्मै नमेस्तु काष्ठाय यत्रात्मा हरि ईश्वरः। हे हरि, हे ईश्वर, हे कृष्ण, तस्मै नमः अस्तु, हम आपको प्रणाम करते हैं। तस्मै नमस्तु काष्ठाय, काष्ठ का अर्थ होता है दिशा। ये देवता लोग भगवान के पास नहीं जा पाए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं क्यों, क्योंकि हिरण्याकश्यपु से डर रहे थे। यदि हिरण्याकश्यपु को पता चल जाए कि ये लोग भगवान के पास गए हैं तो हिरण्याकश्यपु मारेंगे। ठीक वैसे ही जैसे इस भागवत कथा में आने से कुछ लोग डरते हैं, कभी कभी देखा गया है। कुछ लोगों की बहुत इच्छा होती है कि हम लोग भागवत कथा में आए परंतु भागवत कथा के पंडाल में अंदर नहीं आते हैं। क्यों, क्योंकि यदि हम इस कथा में जाएंगे तो हमारे गुरु जी क्या कहेंगे। हम जिस गुरु के पास जाते हैं, जिस मंदिर में जाते हैं, जिस संप्रदाय में जाते हैं, वे लोग क्या कहेंगे, वे लोग डांटेंगे। इसलिए बेचारे भागवत कथा में भी नहीं आ सकते, जैसे बेचारे देवता हिरण्यकश्यपु के डर से भगवान के पास नहीं जा पाए। इसलिए जहां पर थे वहां पर खड़े खड़े वे कहते हैं कि हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं जिस दिशा में भगवान रहते हैं। तस्मै नमोस्तु काष्ठाय भगवान हरि ईश्वर। तो मानो देवताओं को पूछा जाए कि आप उस दिशा को प्रणाम करते हो जिस दिशा में भगवान रहते हैं, तो ये भगवान कौन है? तब ये देवतागण कहते हैं हरि। हरि ही सबके ईश्वर है, और हरि का अर्थ होता है विष्णु या कृष्ण। यद गतवान निवर्तन्ते तद्धाम शांता संन्यासिनो मला। हम उस दिशा को प्रणाम करते हैं जहां पर भगवान रहते हैं, और जिस दिशा में जाकर भगवान के धाम की महिमा बता रहे हैं कि वह भगवान का धाम कैसा है। कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते। बड़े बड़े साधु संत महात्मा भक्त उस भगवान की भक्ति करके उस दिशा में चले जाते हैं, उस भगवान के धाम में चले जाते हैं, जिस दिशा में जाकर न निवर्तन्ते वापस यहां कभी नहीं आना पड़ता। भगवान का धाम, और भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम किए और सब देवता भगवान को प्रकट करने के लिए विनिद्रा वायु भोजना, ये सभी देवताओं ने भोजन बंद कर दिया। देखिए भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या भी करनी चाहिए। वायु भोजना, वायु भोजन का अर्थ है केवल वायु को ही भोजन बनाकर खा रहे थे, अर्थात और कुछ नहीं खा रहे थे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या होनी चाहिए। ये तपस्या जो है भक्ति का एक अंग है। इसका अर्थ यह नहीं कि तपस्या ही भक्ति है, तपस्या ही भक्ति नहीं, तपस्या भक्ति का एक अंग है। और कुछ लोग तपस्या करते हैं अपने मन घड़ंग, अपने मन और अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि मैं ऐसा करूंगी भगवान खुश हो जाएंगे, मैं चलकर यहां से वहां जाऊंगी भगवान खुश हो जाएंगे। ये भगवान कैसे खुश हो जाएंगे, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे, ये हमारे मन में हम सोच नहीं सकते। भगवान से ज्यादा इस बात को कोई नहीं जानता है। इसलिए भगवान शास्त्र में कहते हैं कि यदि आपको मुझे प्रसन्न करना है तो एकादशी जैसे व्रत का पालन करना चाहिए। तपस्या करनी है तो एकादशी के दिन निर्जला रहिए, या सजला रहिए, या सफला रहिए, या अन्न न खाकर मात्र फराल खाकर अपना दिन बिताइए। यह है तपस्या। तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की बात जान दीजिए, हम भी मानो आपको मोटरसाइकिल खरीदना है तो आप दुकान में जाते हो, और दुकान वाले को क्या कहोगे? जो मोटरसाइकिल कम पेट्रोल खाती है और ज्यादा माइलेज चलती है ऐसी मोटरसाइकिल दीजिए। भगवान भी अपने धाम में बैठे बैठे यही देखते हैं कि जो भक्त कम भोजन खाता है और ज्यादा से ज्यादा भजन करता है ऐसे लोगों को भगवान चुन लेते हैं। निद्रा वायु भोजन। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि सबको भूखा रहना चाहिए, खाओ, परंतु जितना भोजन करते हो उतना भजन भी करो। हमसे भजन नहीं होता है और भोजन ज्यादा होता है। भोजन के समान भजन भी होना चाहिए, और साथ ही साथ विनिद्रा। देवताओं ने सोना छोड़ दिया। वास्तव में सोए रहने से भगवान नहीं मिलते, भगवान को प्राप्त करने के लिए जगना चाहिए। कुछ लोग रात दिन सोते रहते हैं, रात को भी सोते हैं, दिन को भी सोते हैं, जैसे सोने के लिए ही उसका जन्म हुआ है। इस संसार में आए हैं सोने के लिए, परंतु भगवान की प्राप्ति करने के लिए सोना कम होना चाहिए। प्रैक्टिकल रूप से देखा जाए तो एक व्यक्ति को 6 घंटा तक सोना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 6.5 घंटा, और यदि आप मजदूरी करते हो, मेहनत का काम करते हो, तो ज्यादा से ज्यादा 7 घंटा। परंतु कुछ लोग शाम को 9 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे तक। ये सूर्य उदय हो जाता है लेकिन यहां जगते नहीं है। जल्दी जगना चाहिए। अब देखिए भगवान कितने बजे जगते हैं आप जानते हैं? साक्षात भगवान रोज सुबह 4:30 बजे जगते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। 4 बजे जगते हैं और 4:30 बजे दर्शन देते हैं। और हम लोग अपने आप को भगत कहते हैं, भगवान जगते हैं 4 बजे और हम जगते हैं 10 बजे। वास्तव में इसे भक्त नहीं कहा जाता है। भक्त तो उसे कहते हैं जो भगवान से पहले जग जाए और भगवान का दर्शन करने के लिए आतुर रहे। जगना चाहिए। हमारे भक्त संत इस संसार के लोगों को जगाते हैं। 2 प्रकार से जगना है, एक तो सोए हुए को जगना है और कुछ लोग जगते जगते सोते हैं। सोना माने अज्ञान, अज्ञान की नींद में सोते हैं। तो जो अज्ञान की नींद में सोए हैं और बिस्तर पर सोए हैं, ऐसे लोगों को हमारे संत जगाते हैं। कैसे जगाते हैं? उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर मोर भई, अब आप जग जाओ, क्योंकि जो सो रहे हैं निश्चित वो खो लेंगे और जो जगते हैं वो पाते हैं। जो
जो जाग
देवता हिरण्याकशिपु के आतंक से दुखी हुए और दुखी होकर भगवान को याद करने लगे। जैसे ही भगवान को याद किए, भगवान तो देवताओं के पास नहीं आए, परंतु भगवान के द्वारा आकाशवाणी हुई। तेषाम आविर्भूतवाणी अरूपा मेघनीस्वना, भगवान के द्वारा आकाशवाणी, और वह आकाशवाणी का आवाज कैसा था? कहते हैं मेघनीस्वना, भगवान का आवाज गरजते हुए मेघ के समान है। जिसको सुनने के लिए है माइक और स्पीकर की आवश्यकता नहीं होती, सब लोग भगवान का आवाज सुन सकते हैं। सन्नादयन्ति ककुभ साधु नाम अभयंकरी, भगवान की वाणी ऐसी है जिसे सुनकर व्यक्ति समस्त भयों से मुक्त हो सकता है। साधु नाम अभयंकरी, भगवान की वाणी को सुनकर साधुगण, उनके भक्त भय से मुक्त होते हैं, और जो असुर होते हैं उससे डर जाते हैं। क्या कहा भगवान ने? देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान कहते हैं कि हे देवतागण, मां भेष्ट, आप डरो मत। विबुध श्रेष्ठा, आप बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत बुद्धिमान हो। सर्वेषां भद्रमस्तु, आपका भद्र हो, कल्याण हो। सर्वेषां, आप सब लोगों का कल्याण हो। मत दर्शनम ही भूतानाम, क्योंकि आपने मेरा दर्शन किया है इसलिए सर्व श्रेयोपपत्तये, इसलिए आप सबका कल्याण निश्चित होगा। कौन कह रहे हैं? भगवान श्री विष्णु। भगवान विष्णु इस श्लोक में देवताओं को विबुध कह रहे हैं। हे विबुधा, बुधा का अर्थ होता है बुद्धिमान, और विबुधा का अर्थ होता है विशेष रूपेण बुद्धिमान। भगवान श्री विष्णु ने देवताओं को विशेष बुद्धिमान कहा है। क्यों? क्योंकि यह देवता हिरण्याकशिपु के आतंक से भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण में आए हैं। इसलिए इस संसार में वही व्यक्ति बुद्धिमान है जिसके हृदय में मानो कुछ इच्छा भी हो जाए, तो वह इच्छा जो भगवान विष्णु या कृष्ण के सामने प्रकट करे, वही संसार में सबसे बुद्धिमान है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुन, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु, ज्ञानी च भरत शबर। चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। कौन? कहते हैं आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। वैसे तो भगवान की शरण में जाने वालों में जिज्ञासु सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं, परंतु अर्थार्थी भी बुद्धिमान है यदि वह भगवान विष्णु के शरण में जाए। अर्थार्थी माने कुछ धन की इच्छा रखने वाला, कुछ सांसारिक भोग की इच्छा रखने वाला, मानो धन चाहिए, गाड़ी बंगला या सांसारिक भोग चाहिए, तभी उस व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान विष्णु या कृष्ण से मांगे। क्योंकि इस भगवान के अलावा संसार के अन्य कोई भी व्यक्ति किसी की इच्छा को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, और यदि इच्छा को पूर्ण कर भी दिए तो वे साथ संतोष नहीं दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण इच्छा को भी पूरी पूर्ण करते हैं और साथ ही साथ संतोष नामक धन भी प्रदान करते हैं। जीवन में यदि संतोष नहीं है तो कितना भी धन संपत्ति गाड़ी बंगले नौकर चाकर हो तो व्यक्ति दुखी ही रहता है। अय धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जब तक संतोष नामक धन नहीं है तब तक व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। तो आप लोग बुद्धिमान हो क्योंकि आप मेरी शरण में आए हो, अन्य किसी की शरण में नहीं गए। ज्ञातमेतस्य दुरात्म्यम देतया पदस्य च, और आप क्यों मेरी शरण में आए हो मुझे पता है, क्योंकि आप हिरण्यकश्यपु के आतंक से दुखी हो, परंतु आप डरिए मत, तस्य शांति करिष्यामि, मैं हिरण्यकश्यपु को शांत कर दूंगा, हिरण्यकश्यपु को मार दूंगा। कालम तावत प्रतीक्षत, आप लोग काल की प्रतीक्षा करो, जैसे ही समय आएगा मैं हिरण्यकश्यपु का वध कर दूंगा। क्योंकि यदा वेदेशु देवेशु गोषु विप्रेशु साधिषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति, क्योंकि इस संसार में जो लोग देवेशु देवताओं से द्वेष करते हैं या वेदेशु या वेदों से द्वेष करते हैं या गोशु या गायों से द्वेष करते हैं या विप्रेशु या ब्राह्मणों से द्वेष करते हैं या साधुषु या साधुओं से द्वेष करते हैं, साधु ब्राह्मण गाय वेद और देवता, इतने लोगों से जो व्यक्ति द्वेष करता है या इनमें से एक व्यक्ति से भी जो द्वेष करता है, कहते हैं वह आसु विनश्यति, वह तुरंत नष्ट हो जाता है, इसका नाश हो जाता है। और यह हिरण्यकश्यपु ये सभी प्रकार के लोगों से द्वेष कर रहा है, इसलिए इसका विनाश निश्चित है, बहुत जल्द हिरण्यकश्यपु का विनाश होगा। लेकिन देवतागण इतने डरे हुए थे, कहा प्रभु आप कहते हो कि हिरण्यकश्यपु का नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, परंतु कब, आप डेट दीजिए कब मरेगा ये, क्योंकि हम लोग बहुत दुखी हैं, आप क्लियर क्लियर साफ साफ बताइए कि आप हिरण्यकश्यपु को कब मारोगे। तब भगवान कहते हैं निर्वेराय प्रशांताय स्वसुताय महात्मने, जब यह हिरण्यकश्यपु स्वसुताय अपने पुत्र जो बहुत बड़ा साधु होगा भक्त होगा, अपने पुत्र साधु भक्त जिसका नाम प्रहलाद है, प्रहलादस्य यदा द्रुह्ये, जब यह हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा तब मैं उस हिरण्यकश्यपु का वध कर दूंगा। बस प्रहलाद से, उनके पुत्र प्रहलाद से जैसे ही द्वेष करेगा मैं उसे मार डालूंगा। देवताओं ने कहा परंतु प्रभु आप जानते नहीं हो हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है तब भगवान ने कहा द्रुह्येत अनिश्चय अपि वर उर्जितम, भले ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है उस वर वरदान को भी लांग कर मैं हिरण्यकश्यपु का वध कर दूंगा। कब? जब हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रह्लाद से द्रोह करेगा। तब युधिष्ठिर महाराज ने नारद मुनि को पूछा कि हे नारद जी, ये हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र प्रह्लाद से द्रोह क्यों करता था? इस संसार में देखा गया है पुत्र कैसा भी हो, पिता अपने पुत्र से निश्चित प्रेम करता ही है, चाहे अंधा हो लंगड़ा हो, पिता का प्रेम अपने पुत्र पर होता है। और उसमें भी प्रह्लाद जैसा महान पुत्र किसी का हो गया हो तो कहना ही क्या। लेकिन यहां पर हिरण्यकश्यपु यह महाभागवत इतने गुणवान पुत्र के साथ द्वेष क्यों किया, इसका कारण क्या है, आप मुझे यह कारण बताइए और प्रह्लाद के बारे में बताइए। तब नारद जी कथा सुनाते हैं और वही कथा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं। कहते तस्य दैत्य पते पुत्रा चतवारो परम अद्भुता, उस दैत्यपति हिरण्यकश्यपु के चार पुत्र थे, उनके नाम भी पुराणों में दिए गए हैं, अहलाद द्रहलाद इत्यादि। परंतु चारों पुत्रों में जो छोटा पुत्र था उसका नाम प्रह्लाद था। तस्य दैत्यपते पुत्रा चत्वार परम अद्भुता प्रह्लादो गुण महांस तेषा गुणे महद उपासक। परंतु चार पुत्र में से जो प्रह्लाद था वह बहुत महान था। अच्छा, इस संसार में महान किसे कहा जाता है? जिसके पास धन हो उसे महान कहा जाता है, या जो देखने में सुंदर हो वह महान है, या जिसके पास गाड़ी बंगला हो वह महान है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जिसमें गुण होते हैं, हैं? व्यक्ति गुण से महान होता है, न कि सुंदरता से और धन से, न तो उम्र से। प्रह्लाद महाराज में बहुत गुण थे। तब तुरंत नारद मुनि को युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, तब बताइए प्रह्लाद महाराज में क्या क्या गुण थे। अब प्रह्लाद महाराज के गुणों का वर्णन कर रहे हैं, हम भी संक्षिप्त में करेंगे, क्योंकि वैसे तो हम में दुर्गुण ही दुर्गुण है। हम लोग कलयुग के मनुष्य हैं और उसमें भी हमारे हृदय में दुर्गुण भरे हुए हैं। यदि हमें सद्गुण लाना है तो प्रह्लाद महाराज के सद्गुणों को सुनना चाहिए। प्रह्लाद महाराज के गुण को सुनकर हमारे हृदय में भी वह गुण आ सकते हैं। इसलिए ध्यान से बड़ी श्रद्धा से प्रह्लाद महाराज के इस गुण का श्रवण करना चाहिए। प्रह्लाद महाराज में गुण क्या था? कहते हैं ब्रह्मणीय। प्रह्लाद महाराज को ब्रह्मणीय कह रहे हैं। अब देखिए भागवत में प्रह्लाद महाराज को ब्रह्मणीय, ब्रह्मणीय माने ब्राह्मण। प्रह्लाद महाराज कैसे थे? कहते हैं ब्राह्मण। जब मैं यह बहुत साल पहले है जब मैं यह पढ़ रहा था तो मेरे मन में प्रश्न उठा कि प्रह्लाद महाराज का जन्म तो असुर परिवार में हुआ था, ये हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे, और भागवत में प्रह्लाद महाराज के लिए शब्द आया है ब्राह्मणीय शील संपन्न। मैं बहुत परेशान हो गया कि ऐसा प्रह्लाद महाराज के लिए ब्राह्मणीय क्यों। तब मैं मेरे गुरु महाराज से मिलने के लिए गया और कहा कि गुरुजी, भागवत की यह बात समझ में नहीं आ रही है कि प्रह्लाद महाराज की मां कयाधु पिता हिरण्यकश्यपु दोनों असुर परिवार के, और उस प्रह्लाद को यहां पर ब्राह्मणीय कहा गया है, इसका कारण क्या है। तब हमारे गुरु महाराज ने बहुत सुंदर बात बताई, कहा देखो इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। प्रह्लाद महाराज को ब्राह्मणीय इसलिए कहा गया क्योंकि प्रहलाद महाराज के गुण ब्राह्मण जैसे थे, प्रहलाद महाराज के कार्य ब्राह्मणों के थे। इसलिए असुर परिवार में जन्म लेने के बाद भी भागवत में सुखदेव गोस्वामी और नारद मुनि प्रहलाद महाराज को ब्राह्मणीय कह रहे हैं, ब्राह्मण कह रहे हैं। ये भागवत साक्षी है, यदि किसी का जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो परंतु यदि उसमें ब्राह्मण के गुण हैं तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। ये भागवत में आया है, ये श्लोक भागवत के सप्तम स्कंध के चतुर्थ्याय का 31वां श्लोक। ब्राह्मणी प्रहलाद महाराज में सबसे पहला गुण क्या था, कहते ब्राह्मणी, ब्राह्मण थे। ब्राह्मण माने जैसे ही ब्राह्मण शब्द आता है तो गीता का वह श्लोक सबको याद होना चाहिए, शमः दमः तपः शोच शांति ऊर्जव एवं एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ब्राह्मणों का कर्म क्या है, ब्राह्मणों को क्या करना चाहिए, कहते हैं शमः। शमः का अर्थ होता है अपने मन को वश में करना। एक ब्राह्मण को चाहिए अपना मन अपने वश में रखे। दूसरी बात, मैं भगवत गीता की बात बता रहा हूं तो आप लोग कहेंगे कहां लिखा है भगवत गीता में। दमह, दमह का अर्थ होता है इंद्रियों को वश में करना। ब्राह्मणों को चाहिए कि अपनी इंद्रियों को वश में रखें। तप, तप का अर्थ होता है अपने शरीर को कष्ट देना, तपाना जानबूझकर। शौच, शौच का अर्थ होता है पवित्रता, अपने आप को अंदर और बाहर, अंतर बहिर वच सूची, अंदर और बाहर से अपने आप को पवित्र रखना, शौच। शम दम तप शोच शांति ऊर्जा एवच, और शांत रहना। ब्राह्मणों का यह धर्म है कि वह शांत रहे। ब्राह्मण शांत होता है, वह उत्पाती नहीं होता है कि यहां जाऊं ये कर लूं वो कर लूं, शांत। संसार यहां से वहां हो जाए परंतु ब्राह्मण शांत रहता है, उत्पाती नहीं होता है। ये ब्राह्मणों के कर्म भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं। और ज्ञान विज्ञान, ब्राह्मण को चाहिए कि ज्ञान अर्जन करे और साथ ही साथ विज्ञान, उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करे। विज्ञान का अर्थ होता है अपने जीवन में अप्लाई करना। ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य, और वह आस्तिक, भगवान के ऊपर उनकी आस्था होनी चाहिए। और ये है ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्रह्म, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होने चाहिए, यही ब्राह्मणों का स्वभाव होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति में जन्मजात यह स्वभाव है तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है, ब्राह्मणी। प्रहलाद महाराज का जन्म से असुर परिवार में जन्म था परंतु ऐसा स्वभाव था, ब्राह्मणी, ब्राह्मण के गुण थे। और क्या था, कहते हैं शील संपन्न, शील था। शील माने किसके साथ कैसा व्यवहार करना, शील करता है व्यवहार। प्रहलाद महाराज का व्यवहार बहुत सुंदर था। आज कुछ लोग भजन तो करते हैं परंतु भजन करने के बाद भी व्यवहार अच्छा नहीं होता है, किसी का धन ले लेते हैं, कहीं पर गड़बड़ कर देते हैं। व्यवहार शुद्ध होना चाहिए। वेद में यहां तक कहा गया है, येषान विद्यान तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि शील नहीं है, शील संपन्न यदि कोई नहीं है तो ते वह व्यक्ति मृत्यु लोके, इस मृत्यु, इस पृथ्वी पर भूवि भार भूता, भार है, बोझ है, धरती पर बोझ है। जिसमें यह गुण नहीं है। और इतना ही नहीं, मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, वह दिखता तो है मनुष्य परंतु मनुष्य के रूप में वह पशु है। क्यों? क्योंकि शील नहीं है। ब्राह्मणीय शील संपन्न सत्य संधो जितेंद्रिय, प्रहलाद महाराज में तीसरा गुण क्या था? कहते हैं सत्य संधो, जीवन में सत्य बोलते थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे। आज तो लोग कदम कदम पर झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने की एक फैशन हो गई, एक आदत पड़ गई। कुछ लोग झूठ बोलना नहीं चाहते हैं फिर भी झूठ निकल जाता है। मान लो कोई अजमेर से निकला है, अभी अभी अजमेर से निकला है, और फोन किया जाए कहां पहुंचे हो, खड़ा है अजमेर में, कहेंगे पर्वत सर पहुंच गया, बस अभी अभी पहुंच रहा हूं। झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, अभी आपके पास पहुंच गया। झूठ बोलते हैं। श्रीमद् भागवत में एक बार उद्धव जी ने कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, इस संसार में सबसे बड़ा वीर कौन है? तब कृष्ण ने उत्तर दिया कि संसार में सबसे बड़ा वीर सत्य बोलने वाला। सत्य बोलना यह बहुत बड़ी वीरता है। अपना काम बनाने के लिए कहीं भी झूठ बोल दिया यह वीरता नहीं है, सत्य बोलना है वीरता है। प्रहलाद महाराज सत्यभाषी थे, और इसी के साथ साथ जितेंद्रिय, अपनी सभी इंद्रियों को जीत कर रखे थे। प्रहलाद महाराज जितेंद्रिय थे और हम लोग इंद्रिय जीत, उससे उल्टा। प्रहलाद महाराज अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे और हम लोग इंद्रियों के काबू में हो गए। कैसे? मानो प्रहलाद महाराज को, मानो मैं तो दृष्टांत दे रहा हूं, मानो पानी पूरी खाने का मन हुआ, गोलगप्पा, तो जितेंद्रिय थे नहीं खाऊंगा, लेकिन हम लोग थोड़ा सा ये खाने का मन हो गया तो तुरंत वहां जाकर खड़े रह जाते हैं। इसे कहते हैं इंद्रिय जीत। इंद्रिय की इच्छा हुई और हम जाकर खड़े रह गए, हम लोग इंद्रियों के वश में हो गए। परंतु इंद्रियों को हमारे वश में रखना चाहिए। इस संसार में जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता है वो बहुत दुखी होता है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परमं मनः, मनसस्तु पराबुद्धि ये बुद्धि परतस्तु सः। गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है। मन की इच्छा पूरी करने के लिए इंद्रियां यहां से वहां, वहां से वहां, ये इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन है और मन को कंट्रोल करने वाली बुद्धि है। इसलिए हमें बुद्धि के द्वारा मन को वश में करना चाहिए और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं होगा तो उपनिषद में दृष्टांत दिया गया है कि हमारी ये पांच इंद्रियां रथ के पांच घोड़े के समान है। रथ जो है हमारा शरीर है और हमारी पांच इंद्रियां रथ के घोड़े के समान है। उस घोड़े के नाक से निकली हुई जो लगाम है ये मन के समान है, और बुद्धि जो है सारथी के समान है, और उस रथ पर बैठने वाला व्यक्ति आत्मा है। यदि सारथी घोड़े के हाथ में, सारथी के हाथ में लगाम है तो घोड़े बहुत अच्छी तरह चल सकते हैं, रथ कहीं भी जा सकता है, जहां चाहो वहां आप रथ को लेकर जा सकते हैं। परंतु यदि सारथी के हाथ से लगाम छूट गई तब क्या होगा? घोड़े कहीं भी चले जाएंगे। वैसे ही हम सबको बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। यदि बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रिया वश में नहीं हो रहे हैं तो फिर उस रथ की तरह हो जाएगा जिस रथ की लगाम सारथी के हाथ में नहीं रहती। जितेंद्रिय बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज ब्राह्मणीय थे, शील संपन्न थे, सत्यवासी थे, जितेंद्रिय थे, और उसका गुण बताते हैं आत्मवत सर्वभूतानाम। सर्वभूतानाम सभी जीवों को प्रेम करते थे। कितना प्रेम? जैसे व्यक्ति अपनी आत्मा से प्रेम करता है, अर्थात व्यक्ति अपने आप से जितना प्रेम करता है उतना ही प्रेम प्रहलाद महाराज सबसे करते थे। सभी जीवों को एक समान समझते थे और सबसे प्रेम करते थे। ऐसा नहीं कि इससे प्रेम करना, इससे द्वेष करना, इससे झगड़ा करना, इसको प्रेम देना, सबको समान दृष्टि से देखते थे, सबसे प्रेम करते थे। और एक प्रिय सुहत्तम, और वे सबके प्रिय थे। देखिए बहुत सुंदर बात हमारे लिए है, प्रहलाद महाराज को सब लोग प्रेम करते थे, असुरों को छोड़कर सब लोग प्रहलाद महाराज को प्रेम करते थे। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह कि प्रहलाद सबको प्रेम करते थे। यदि आपको प्रेम चाहिए तो प्रेम देना सीखो। प्रेम दिए बिना प्रेम कभी मिल नहीं सकता है। आप दूसरे को जितना प्रेम दोगे वह आपको उतना प्रेम करेंगे। प्रहलाद महाराज को सब लोग प्रेम करते थे। प्रहलाद महाराज का व्यवहार कैसा था? कहते हैं दासवत सन्नत आर्यं घ्री। आर्य जो श्रेष्ठ पुरुष होते थे, जो बड़े लोग होते थे, उनके साथ दास के समान रहते थे। अपने से बड़ों के साथ दास के समान, और पितृवत दीनवत्सल, और जो छोटे होते थे, जिसके पास कम धन होता था, कम उम्र होती थी, छोटे लोगों के साथ पितृ के समान व्यवहार करते थे, पिता के समान। बड़ों के साथ दास के समान, छोटों के साथ पितृ के समान, और अपने समान वय के जो थे भातृवत सदृशे स्निग्ध, अपने समान लोगों से भाई के समान प्रेम करते थे। भाई के समान मतलब आज के जो भाई भाई प्रेम करते हैं उतना नहीं, उससे कोटि गुना श्रेष्ठ। आज के भाई तो आपस में ही झगड़ पड़ते हैं, परंतु अपने से जो बराबरी में थे, कभी कभी होता है व्यक्ति अपने से बड़ों से प्रेम करता है, छोटे से प्रेम करता है, परंतु बराबरी वालों से प्रेम नहीं होता है, उसे द्वेष करता है कि ये साला मेरे से आगे निकल रहा है। नहीं, प्रहलाद महाराज अपने बराबरी वालों से क्या करते थे? कहते हैं भाई के समान। यदि बराबरी वाला अपने से आगे निकल रहा है तो उसे सपोर्ट करते थे, मदद करते थे कि वह आगे बढ़े। यहां तो यदि बराबरी वाला थोड़ा सा आगे निकल रहा है तो टांग खींचते हैं, मेरे से आगे क्यों जा रहा है, मेरे से आगे नहीं जाना चाहिए। संसार में ऐसा हो रहा है, इसलिए संसार पीछे रह गया है, कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। एक बार हमारे भारत से कई सारे केकड़े, केकड़े जानते हैं, समुद्र में खाड़ी में होते हैं, कई सारे केकड़े एक्सपोर्ट हो रहे थे, मतलब भारत से विदेश में जा रहे थे। तो विदेश में जब केकड़े जा रहे थे तो कंटेनर में जाते हैं, कंटेनर आपने देखा होगा, बहुत बड़ा कंटेनर होता है और जहाज में उसे रखा जाता है। बहुत बड़ा कंटेनर था, उसमें हजारों हजारों केकड़े भरे हुए थे, और कंटेनर का छपरा नहीं था। उस जहाज में कोई नया नया नौकरी करने के लिए आया था, जहाज पानी में चल रहा था, विदेश में जा रहा था, तो नया नया व्यक्ति नौकरी में आया और जाकर ऊपर जाकर देखा तो जिसमें केकड़े भरे हुए थे उस कंटेनर में छपरा नहीं था। वे दौड़ते दौड़ते जहाज के कैप्टन के पास आया, कहा देखो देखो हम लोग कंटेनर लेकर जा रहे हैं, परंतु हजारों केकड़े हैं परंतु छपरा नहीं है, ये केकड़े वहां से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। पता है ना, कंटेनर से चलते हुए बाहर निकल भी सकते हैं। तब उस जहाज के कैप्टन ने कहा हजारों केकड़े उसमें भरे हुए हैं, परंतु मेरा 10 साल का अनुभव है, आज तक एक केकड़ा उससे बाहर नहीं निकला। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, चलो आकर देखो। ये दोनों ऊपर गए, सीढ़ी लगाई और दोनों ऊपर खड़े खड़े देख रहे हैं। एक केकड़ा अपनी पूरी शक्ति लगाकर वहां से छूटना चाहता है, धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहा है, और जैसे ही उस कंटेनर से उस डिब्बे के बाहर आने की कोशिश कर रहा है, दो केकड़े पकड़कर उसे नीचे खींचते हैं। तू कैसे बाहर निकल सकता है, एक को नीचे गिराया, फिर दो केकड़े बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर आते हैं, तो तीन केकड़े आते हैं और दोनों को गिरा देते हैं। तू कैसे जा सकता है। वे तीन केकड़े बाहर आने की तैयारी करते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, तो चार केकड़े आते हैं, आकर गिरा देते हैं। वैसे कई सारे केकड़े ऊपर निकलना चाहते हैं, परंतु एक दूसरों को गिराने में ही सब लोग वहां फंसे हुए पड़े रहते हैं, कोई नहीं निकल पाता। आज समाज में यही हो रहा है, एक व्यक्ति को आगे बढ़ना है तो दूसरे के सिर के ऊपर पांव रखकर आगे बढ़ेगा, दूसरों को गिराए बिना खुद आगे बढ़ नहीं सकता। परंतु प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं, अपने बराबरी वालों से भाई की तरह रहते। और गुरु शु ईश्वर भावना, और अपने गुरु के प्रति क्या भावना थी, क्या व्यवहार था, कहते हैं गुरु को ईश्वर की तरह सम्मान देते थे, भगवान की तरह पूजते थे। हम सबको इस बात को समझना है, गुरु शु ईश्वर भावना। देखिए कई लोग शास्त्र को ठीक से समझने के ठीक से नहीं समझ पाए हैं, और इसी के कारण संसार में बहुत उत्पात मचा रहे हैं। आपके पास भागवत तो नहीं है, लेकिन भागवत का श्लोक मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। कहते हैं गुरु शु ईश्वर भावना, अपने गुरु में ईश्वर की भावना रखते थे, न तो गुरु को ईश्वर समझते थे। यहां पर आया है गुरु शु ईश्वर भावना, तो संसार के कुछ मूर्ख लोग होते हैं, वे गुरु को ही ईश्वर समझ बैठते हैं। गुरु कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। हाँ, गुरु शु ईश्वर भावना, गुरु में ईश्वर की भावना कर सकते हो, अर्थात गुरु को भगवान की तरह सम्मान दे सकते हो, आदर दे सकते हो, पूजा कर सकते हो, परंतु गुरु ही ईश्वर ये कभी नहीं हो सकता। तब संसार के लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, ये तो शास्त्र में लिखा है, परंतु शास्त्र के किसी भी श्लोक का अर्थ होता है, अर्थ का तात्पर्य होता है और उसका भाव होता है। शास्त्र के श्लोक का भाव समझना चाहिए। जैसे कि यहां पर मान लो कोई एक वाक्य है, उसके दो भाव होते हैं, इसी श्लोक के दो भाव है। जैसे मान लो कोई मुझे ग्लास में पानी दे रहा हो, हमारे हाथ में ग्लास है और उसमें कोई पानी डाल रहा है, और यदि मैं कहूं तो बस, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या होगा, बस अब मुझे पानी नहीं चाहिए, होगा कि नहीं। यदि मेरे हाथ में ग्लास है और कोई मुझे पानी दे रहा है और मैं कह दूं बस, तो इसका अर्थ है कि मुझे पानी नहीं चाहिए। परंतु यदि मेरे हाथ में ग्लास है और कोई मुझे पानी दे रहा है और मैं कहूं बस, तो इसका अर्थ क्या है, बस इतना ही और दीजिए। देखिए बस एक ही शब्द है, परंतु इसके दो अर्थ हो गए। एक अर्थ यह हुआ कि अब नहीं चाहिए, और दूसरा अर्थ हुआ चाहिए, दोनों उल्टा अर्थ। वैसे शास्त्र के जो श्लोक हैं उनके भाव कई सारे हैं। बुद्धिमान व्यक्ति और आचार्य से इस भाव को समझना चाहिए। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, इस श्लोक का भाव ये नहीं है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव जी है, नहीं, गुरु ब्रह्मा नहीं है, परंतु गुरु ब्रह्मा जितने आदरणीय है, सम्माननीय है। गुरु विष्णु नहीं है, परंतु गुरु विष्णु की तरह आदरणीय, विष्णु की तरह उसे आदर देना चाहिए। गुरु शिव जी नहीं है, गुरु शिव जी जितने आदरणीय, बताइए, गुरु विष्णु, गुरु को विष्णु कहते हैं। विष्णु का काम है अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन करना। अनंत कोटि ब्रह्मांड का पालन भगवान विष्णु करते हैं। ये गुरु जिस मठ मंदिर में रहते हैं वह दूसरे के धन पर आधारित होता है और कहते हैं गुरु विष्णु। खुद अपने मंदिर और मठ का पालन नहीं कर सकते हैं, दुनिया का पालन क्या करेंगे, और उस गुरु को विष्णु कहा जाता है, गुरु विष्णु। और कुछ लोग कहते हैं गुरु महेश, गुरु ही शिव जी है। शिव जी का काम है प्रलय करना। जब शिव जी ही प्रलय करते हैं, 11 रुद्र के रूप में नाचते हैं और अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय कर देते हैं, हजारों हजारों लोगों को, करोड़ों जीवों को मार डालते हैं, और यहां उस गुरु को शिव जी कहा जा रहा है। आज के गुरु हजारों लोगों की मारने की बात दूर रही, किसी एक व्यक्ति का खून कर दे जेल में बंद कर देंगे वो शिव जी को। गुरु न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है। हाँ, गुरु ब्रह्मा विष्णु और शिव जी जितने पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भागवत में यह बात आ रही है, गुरु शु ईश्वर भावना। मैं समझ रहा हूं यहां पर कई लोगों को यह बात अच्छी नहीं लग रही है, कई लोग अपना मुंह भी बिगाड़ रहे हैं, परंतु आप लोग ने मुझे व्यासपीठ के ऊपर बिठाया है। व्यास देव के द्वारा प्रदत्त यह व्यास गादी के ऊपर बैठकर हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं। व्यास देव जी ने जो श्लोक लिखा है, गुरु शु ईश्वर भावन, इस श्लोक को आपके सामने प्रकट कर रहा हूं। कभी कभी लोगों को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। बुरा इसलिए लगता है क्योंकि उसके हृदय में बुराई है। जो व्यक्ति सच है, सत्य है, उसे बुरा नहीं लगेगा, वह खुश होगा, प्रसन्न होगा, क्योंकि उसे आज कुछ नया जानने मिला। लोहिताक्ष प्रभु, आप वहां क्यों देख रहे हैं? वक्ता यहां पर बैठे हैं, बार बार आप वहां देख रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
गुरु शु ईश्वर भावना। गुरु एक महान व्यक्ति है, गुरु के द्वारा ही ज्ञान मिलता है। बिना गुरु के न तो ज्ञान मिलेगा, न भगवान मिलेंगे। गुरु सम्माननीय है, गुरु आदरणीय है, गुरु प्रथम पूजनीय है, परंतु गुरु भगवान कभी नहीं है। गुरु गुरु है, भगवान भगवान है। ये शास्त्र का अकाट्य सिद्धांत है। तो प्रहलाद महाराज गुरु शु ईश्वर भावन, गुरु में ईश्वर की भावना करते थे, ईश्वर की तरह आदर देते थे, और विद्या अर्थ रूप जन्माढ्य। प्रहलाद महाराज में पूर्ण रूप से विद्या थी। विद्या माने संसार की भौतिक विद्या और आध्यात्मिक विद्या। रूप, प्रहलाद महाराज का रूप भी बहुत सुंदर था, सांवले रंग के। भगवान श्री कृष्ण का जो रूप था वैसा ही रूप प्रहलाद महाराज का था। और जन्माढ्य, जन्म भी बहुत बड़े परिवार में, कश्यप जी के परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इतना होने के बाद भी प्रहलाद महाराज का सबसे बड़ा गुण बता रहे हैं, मानस स्तंभ विवर्जित। प्रहलाद महाराज में संपूर्ण रूप था, वे सुंदर थे, धन था, ऐश्वर्य था, बड़े कुल में उनका जन्म था, उनका बाप तीनों लोकों का स्वामी था। ये सब कुछ होने के बाद भी प्रहलाद महाराज के हृदय में थोड़ा भी अहंकार नहीं था, मानस स्तंभ विवर्जित, किसी भी प्रकार का मान या अभिमान नहीं था। यह सबसे बड़ा गुण है। इस संसार के व्यक्ति में सब कुछ हो सकता है, रूप धन, परंतु थोड़ा सा रूप थोड़ा सा धन आ जाता है तो व्यक्ति के हृदय में अहंकार बढ़ जाता है। परंतु यह सब कुछ होने के बाद भी प्रहलाद महाराज को अभिमान नहीं था। आगे कहते हैं, न उद्विग्न चित्त व्यसनेषु निष्प्रिय। इस संसार में कभी कभी हमारे मन से कुछ विपरीत वस्तु हो जाती है, कभी कभी होता है हमारे मन में कुछ इच्छा होती है और हो जाता है कुछ, तब क्या होता है, जब हमारे मन की इच्छा पूर्ण नहीं होती है तब हमें क्रोध आता है, हमारी बुद्धि उद्विग्न हो जाती है, हमारी बुद्धि डिस्टर्ब हो जाती है। परंतु प्रहलाद महाराज के मन के विपरीत यदि कुछ भी हो जाता था तो न उद्विग्न चित्त, उनका चित्त उनकी बुद्धि कभी उद्विग्न नहीं होती थी, शांत रहते थे। यह है भक्त का गुण, यह है वैष्णव साधु का गुण, न उद्विग्न चित्त, कभी भी उनका चित्त उद्विग्न नहीं होता था। और व्यसनेशु निष्प्रिय, व्यसनेशु व्यसन माने व्यसन जानते हैं ना, सिगरेट का व्यसन, तंबाकू का व्यसन, जर्दा खैनी गुटखा चलम गांजा, ये सब व्यसन है। तो मानो यदि पूछा जाए प्रहलाद महाराज गांजा पीते थे, हमारे गुरु तो पीते हैं, प्रहलाद महाराज पीते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं मेरे गुरु पीते हैं, कुछ लोग उल्टा समझ लेंगे कि लाल गोविंद प्रभु के गुरु गांजा पीते, नहीं मैं आपके भाव में कह रहा हूं। होता है प्रवचन सुनने में भी बुद्धिमानी होनी चाहिए। एक बार हमारे गुरु महाराज राजस्थान के ही किसी गांव में कथा कर रहे थे और कथा करते करते दृष्टांत दे रहे थे। दृष्टांत सिद्धांत यह था कि भगवान इस संसार के सभी जीवों से प्रेम करते हैं। तो ये समझाते समझाते उन्होंने एक दृष्टांत दिया, मानो मान लो कि मेरे चार पुत्र है और मेरे चार पुत्र में से एक अंधा है, एक बहरा है, एक लंगड़ा है, परंतु मेरा चारों पुत्र के प्रति प्रेम समान होगा क्योंकि मैं उनका पिता हूं। इस प्रकार से अपनी कथा में ये बताया। प्रवचन के बाद एक व्यक्ति बहुत डिस्टर्ब हो गया और दूसरे से पूछा, करे कि ये तो ब्रह्मचारी है, हमारे गुरु महाराज सन्यासी हैं लाल कपड़े में। अरे गुरु महाराज तो ब्रह्मचारी हैं सन्यासी हैं, तो उसके चार पुत्र कहां से आए? इतना टेंशन में इतना चिंतित था। तो दूसरे ने कहा कि नहीं वो तो दृष्टांत दे रहे थे। अरे नहीं, वो अपने प्रवचन में तो कहे कि मान लो आपको मानना है कि मेरे चार पुत्र है, वो तो बता रहे थे कि उनके चार पुत्र है, तो जन्म से ब्रह्मचारी हैं सन्यासी हैं, तो ये चार पुत्र कहां से आए? और हुआ ऐसा कि ये दोनों बात कर रहे थे और हमारे गुरु महाराज वहां से निकल रहे थे और इस बात को सुन लिए और फिर उसे समझा दिए। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि सुनने में भी बुद्धिमानी होनी चाहिए। व्यसनेषु निष्प्रिय, क्या प्रहलाद महाराज कोई व्यसन करते थे? नहीं, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं। जो साधु होता है वह कभी व्यसन नहीं करता है और जो व्यसन करता है वह कभी साधु नहीं हो सकता। यह भी किसी को बुरा लगा होगा, परंतु क्या करें, शास्त्र बोलने के लिए बैठा हूं, सत्यभाषी, सत्य बोलना है। व्यसनेषु निष्प्रिय, प्रहलाद महाराज किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान थे। ये व्यसन शब्द संस्कृत शब्द है और संस्कृत में व्यसन का अर्थ होता है दुख। दूसरा पर्यायवाची शब्द यदि लेंगे तो आपत्ति, व्यसन का अर्थ होता है आपत्ति, दुख, क्लेश। वास्तव में ये जो सिगरेट तंबाकू मावा जर्दा गुटखा, प्रधान जी सुन रहे हैं ध्यान से, ये जो भी व्यसन है ये सभी व्यसन दुख देने के लिए है। एक भी व्यसन दुख दिए बिना व्यक्ति को नहीं छोड़ता है। व्यसन कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल एक ना एक दिन दुख और आपत्ति आएगी। इसलिए एक सज्जन व्यक्ति को, एक साधु पुरुष को चाहिए कि कभी व्यसन ना करे, किसी भी प्रकार का व्यसन ना करे। आप देखिए हम लोग, हमारी बुद्धि कितनी डल हो गई है। आज तो बेचारे सिगरेट बनाने वाले बॉक्स पर लिखते हैं सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ, सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक है। तब गवर्नमेंट में बहुत बड़ा प्रश्न उठा कि गांव वाले इंग्लिश समझ नहीं सकते हैं, क्या किया जाए, तो इसके लिए इतना बड़ा फोटो लगाते हैं, बिच्छू का फोटो, कम से कम देख तो सकते हैं पढ़ नहीं सकते हैं। पढ़ने के बाद देखने के बाद पश्यन अपि न पश्यति, फिर भी लोग नहीं समझते। पहले तो बनाने वाले नहीं समझते, बनाने वाले लिख रहे हैं कि ये इंजरियस टू हेल्थ, ये सेहत के लिए हानिकारक है। ये सेहत के लिए हानिकारक है तो तुम क्यों बना रहे हो? और बनाने वाला कमाने के लिए बना रहे हैं तो ये नेता गवर्नमेंट क्यों उसे लाइसेंस दे रहे हैं? गवर्नमेंट को चाहिए कि जो चीज हमारी सेहत के लिए हानिकारक है उसे बैंड किया जाए, बंद किया जाए। तो बनाने वाले मानो अपने पैसे कमाने के लिए बना रहे हैं तो इसे लाइसेंस भी दिया जा रहा है। ठीक है, ये दोनों मूर्ख हैं तो हम तो बुद्धिमान हैं, खाने वाले देखकर पढ़कर भी हम नहीं जानते हैं। अब देखिए, ये भक्ति के लिए तो बाधक है ही, परंतु हमारी सेहत के लिए कितना बाधक है। प्रायः जितने रोग होते हैं, बड़े बड़े रोग, कैंसर इत्यादि, ये कैंसर जैसे रोग व्यसन से होते हैं। व्यक्ति मोमबत्ती की तरफ पिघल जाता है, एक दो महीने में मर जाता है। और ये गले का कैंसर, व्यक्ति सड़ सड़ कर मरता है। क्यों ये आपत्ति हमारे शरीर पर लानी है जानबूझकर? हम यदि कहते हैं आप व्यसन मत करो तो लोग कहते हैं यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा सिर दर्द होता है, सिर दर्द होता है। हम तो जन्म से नहीं किए, हमारा तो नहीं हो रहा है। और कई लोग व्यसन करते थे, छोड़ दिए, वह भी जिंदा है, मर तो नहीं गए। आपको छोड़ना नहीं है, बस मूल प्रश्न ये है। यदि हमको छोड़ना है तो एक झटके में छूट सकता है, और बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में कभी व्यसन नहीं कर सकता, नहीं करता। व्यसनेषु निष्प्रिय, प्रहलाद महाराज किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते थे। और जो व्यसन नहीं करता है वही व्यक्ति साधु है। एक बार प्रभुपाद जी ने हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत इस संस्था के आचार्य प्रभुपाद जी ने ऐसा प्रवचन दिया, चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए, पर स्त्री संग नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति के हृदय में यह बात बैठ गई और ये सारी बात अपने जीवन में उतार लिया। और दूसरे दिन दौड़कर प्रभुपाद जी के पास आया, गुरुजी मैंने ये सारा व्यसन छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, अब तो मैं साधु हो गया ना। प्रभुपाद जी ने कहा तुम साधु नहीं, तुम अब मनुष्य बने हो, साधु तो अब बनोगे। मेरा कहना यह है कि कम से कम मनुष्य तो बनिए, ये व्यसनों को छोड़कर कम से कम मनुष्य के स्तर पर तो उठिए, साधु तो हम बाद में बनेंगे। तो जो व्यसन करते हैं वे कभी साधु नहीं हो सकते हैं। साधु वेश धरी साधु न होई, साधु का वेश पहनते हैं और व्यसन करते हैं तो मात्र ये साधु का वेश पहनकर साधु नहीं होते हैं। प्रहलाद महाराज व्यसन से निष्प्रिय, किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करते थे। और दुष्टेशु गुणेशु अवस्तु अद्रिक, और संसार में किसी भी नई नई तड़क भड़क वस्तु को देखते थे तो उस नई वस्तु को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती थी। हम तो किसी भी दुकान में जाते हैं, कोई नई आइटम देख ली तो सोचते अब ये हमारे घर पर कब आएगी। खास करके माताओं में यह स्वभाव होता है, अरे बाजू वाली ने बनारसी साड़ी खरीदी है तो मुझे भी खरीदना है, वे गले में मंगलसूत्र इतना नया पहनती मुझे भी पहनना है, ये चुड़िया पहनती मुझे भी पहनना है। परंतु एक भक्त के हृदय में यह देखा देखी की भावना नहीं होती है, वे अपनी स्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार अपने जीवन को निर्वाह करते हैं। आगे कहते हैं दांत इंद्रिय प्राण शरीर धि। प्रहलाद महाराज इंद्रिय प्राण शरीर और बुद्धि, अपनी इंद्रिय अपने प्राण अपने शरीर और बुद्धि को वश में किए हुए थे, इंद्रियों को वश में किए थे, प्राण को, प्राण माने श्वास उच्छ्वास, सांस को यदि अपने वश में हम कर लेते हैं तो हमारी उम्र लंबी हो सकती है। आप अपनी उम्र को लंबी कर सकते हैं, कैसे? अपने प्राण को जीत कर। बड़े बड़े योगी लोग हजार हजार वर्ष तक जीते हैं अपने सांस को रोक कर। लेकिन आज लोग पाप कर रहे हैं, ऐसे पापमय जीवन से अच्छा है जल्दी मर जाए, क्योंकि ज्यादा यहां इस दुनिया में रहेंगे तो ज्यादा पाप करेंगे, इसलिए अच्छा है पाप करने से बजाय जल्दी ही मर जाए। परंतु जो संत हैं साधु हैं उनकी समाज में आवश्यकता है, इसलिए वे अपने प्राण को वश में रखकर उनकी उम्र लंबी कर देते हैं। इतना ही नहीं, सदा प्रशांत काम। प्रहलाद महाराज सदा प्रशांत रहते थे, प्रकृष्ट रूपेण शांत इति प्रशांत, शांत। जीवन में कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, परंतु उस दुख में उस विषम परिस्थिति में भी शांत रहना, उद्विग्न न होना, इसे शांत कहते हैं। आचार्यगण दृष्टांत देते हैं, जैसे समुद्र, समुद्र को शांत कहा गया है। समुद्र में अनेकों नदियां प्रचंड वेग से आकर मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, ये जितनी भी नदियां हैं ये सभी नदियां समुद्र में मिलती हैं और प्रचंड वेग से समुद्र में मिलती हैं, लेकिन समुद्र फिर भी उद्विग्न नहीं होता है, शांत रहता है। वैसे किसी व्यक्ति की इंद्रियां कितनी भी कामुक हो जाए और कहीं पर भी भटकने लगे, परंतु अपनी इंद्रियों के इस विषय को देखकर कोई विचलित न हो, उसे शांत कहा जाता है। और जीवन में कितना भी दुख आ जाए, उस दुखी स्थिति में, उस विषम परिस्थिति में भी भगवान की भक्ति छोड़े नहीं, उसे शांत कहते हैं, प्रशांत थे। श्रीमद् भागवत में यह प्रशांत शब्द दो लोगों के लिए दिया गया है, एक प्रहलाद महाराज और दूसरे भगवान श्री कृष्ण के मित्र सुदामा। भागवत के दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी सुदामा के लिए कहते हैं, कृष्णस्यासित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा भी प्रशांत थे, तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज प्रशांत और रहिता आसुर असुर और असुर भाव से रहित थे। यद्यपि उसका जन्म असुर परिवार में हुआ था, परंतु असुर परिवार में जन्म होकर भी आसुरी स्वभाव नहीं था। यस्मिन महत गुणा राजन घृणन्ते कवि वीर मुहु। हे राजन, मैं कितने प्रहलाद के कितने गुण सुनाऊंगा, यदि प्रहलाद का गुण सुनाता रहा तो युग के युग बीत जाएंगे। परंतु इतना ही समझिए कि यह प्रहलाद महाराज के इतने सारे गुण प्रहलाद में इसलिए आए क्योंकि प्रहलाद महाराज ने भक्त की संगति की थी। कई बार लोग के मन में प्रश्न होता है कि प्रहलाद के हृदय में इतने गुण कैसे आए, हमें भी प्रहलाद की तरह गुणवान बनना है तो क्या करना चाहिए। निर्मोही ठीक बैठिए। हमें भी प्रहलाद की तरह गुण को अर्जित करने के लिए क्या करना चाहिए। कहते हैं भक्तों का संग करना चाहिए। यस्मिन महत गुणा राजन, हे राजन, यस्मिन, इस प्रकार से महान गुण को यदि अर्जित करना है तो भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का संग कीजिए, जिससे ये महान महान गुण प्राप्त होंगे। वैसे तो प्रहलाद में अनेक गुण हैं, परंतु प्रहलाद का मुख्य गुण ये था वासुदेव भगवती यस्य नैसर्गिकिम रति। वासुदेव वसुदेव नंदन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में प्रहलाद महाराज की नैसर्गिकी रति, जन्मजात रति, भगवान के चरणों में जन्मजात रति थी। होता है कुछ कुछ लड़कों में जन्म से ही भगवान के प्रति प्रेम होता है, और कुछ लड़कों को माता पिता बोल बोल कर थक जाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, परंतु भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। घर से माता पिता धक्का देते हैं कि जाओ कथा में कथा सुनो, परंतु बच्चे लोग नहीं सुनते हैं। और कुछ कुछ बच्चों में जन्म से भगवान के प्रति प्रेम। यहां पर हमारे कुछ बच्चे बैठे हैं 15 साल के 17 साल के हैं, अपना घर छोड़कर निकल गए हैं भगवान की प्राप्ति के लिए। कारण क्या है? अब 15 साल के व्यक्ति को कितना ज्ञान हो सकता है, परंतु इससे यही बात पता चलती है कि जन्मजात, जन्म से भगवान के चरणों में प्रेम है, रति है, और इसी के कारण इतने बड़े वैराग्य प्राप्त करके भगवान की भक्ति में लगे हैं। प्रहलाद महाराज में नैसर्गिक रति थी, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, भक्ति थी, इसलिए प्रहलाद महाराज के गुण का वर्णन किया। अब कार्य का वर्णन कर रहे हैं, क्या करते थे? कहते हैं प्रहलाद महाराज न्यस्त क्रीडनक बाल, वे कभी खेलते नहीं थे, क्रिकेट फुटबॉल कभी नहीं खेलते। क्यों? क्योंकि इस खेलने में अपने समय को व्यर्थ गवाना ये समझते थे। बात भी सत्य है, ये सब खेलने में समय व्यर्थ होता है, और बुद्धिमान व्यक्ति अपने 1 सेकंड को भी व्यर्थ नहीं गवाता है, और कृष्ण भक्त बहुत बुद्धिमान होते हैं। प्रहलाद महाराज उनके सहपाठी मित्र बहुत खेलते थे, परंतु प्रहलाद कभी खेलने में ध्यान नहीं देते। जड़वत तन मनस्तया, और जड़ की तरह रहते थे, न बोलना न चलना, जड़ की तरह। लगता था कोई ग्रह इसको पकड़ लिया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं और कोई ग्रह नहीं, कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, इसे कृष्ण नाम का काला ग्रह पकड़ लिया है। अर्थात ये प्रहलाद कृष्ण की भक्ति करते थे, इसलिए इस प्रकार रहते थे। नवेद जगत ईदृशम, और प्रहलाद भगवान की भक्ति करने में सफल इसलिए रहे क्योंकि नवेद जगत ईदृशम, क्योंकि प्रहलाद जगत के बारे में नहीं जानते थे। हमने हमारे गुरु महाराज के मुख से सुना है नवेद जगत ईदृशम, इस संसार में यदि किसी को अपने हृदय में कृष्ण को भरना है, यदि किसी को कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्रकट करना है, तो सबसे पहले इस दुनिया को भूलना होगा, इस जगत को भूलना होगा, क्योंकि जब तक जगत को नहीं भूलेंगे तब तक कृष्ण को हम भर नहीं सकते हैं। परंतु दुर्भाग्य की बात है कि संसार में जैसे ही सुबह होती है तो संसार के लोग न्यूज़पेपर के द्वारा, अखबार के द्वारा इस दुनिया को अपने आंख और कान से अंदर भरते हैं। ये अखबार में क्या होता है? केवल दुनिया का कचरा होता है बस। यहां पर आतंकवादियों ने इतने को मार डाला, यहां पर इतनी चोरी हुई, वहां पर आत्महत्या हो गई, वहां पर कोई लड़का लड़की को लेकर भाग गया। ये दुनिया का कचरा कचरा पेटी हमारे घर पर आती है और हम उसे अंदर डालते हैं, और ये दुनिया का कचरा अंदर डालकर हम सोचे कि कृष्ण प्रेम उत्पन्न होगा, कभी नहीं हो सकता। और कहते हैं न्यूज, क्या देते हैं नाम? न्यूज। न्यू का अर्थ होता है नया, और उसे बहुवचन में कहते हैं न्यूज। अब इसमें नया क्या है बताइए? नया कुछ नहीं है, सब पुराना है। और ये न्यूज जो होता है कब तक नया रहता है? सुबह आता है, दोपहर होता है, शाम तक तो बासी हो जाता है, फिर वह रद्दी में चला जाता है, दूसरे दिन फिर नया न्यूज। तो कहते हैं दुनिया भर का कचरा हमारे अंदर डालते हैं, केवल न्यूज के द्वारा ही नहीं, केवल अखबार के द्वारा नहीं, टीवी शुरू करते हैं। हम कहते हैं भाई आप फिल्म क्यों देखते हैं, फिल्म नहीं, हम तो केवल न्यूज देखते हैं। और न्यूज के द्वारा पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कान के द्वारा, आंखों के द्वारा ये दुनिया भर के कचरे को अंदर भरते हैं। अब जब तक कचरा अंदर है तब तक कृष्ण कैसे आएंगे। अब सोचे कि हम टीवी भी देखेंगे, अखबार भी पढ़ेंगे, दुनिया की चर्चा भी करेंगे और कृष्ण से प्रेम भी करेंगे, ये कभी हो नहीं सकता है। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत कह रहा है, न वेद जगत ईदृशम। यदि कृष्ण को अंदर भरना है तो जगत, न वेद जगत को नहीं भरना है। इसलिए हम सबको जागृत होना है कि रोज सुबह उठकर ये न्यूज पेपर को छोड़कर, अखबार को छोड़कर भगवत गीता पढ़नी चाहिए, श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए, अनेक ग्रंथ, अनेक पुराण पढ़ने के लिए बहुत सारी वस्तुएं हैं। तो ये सब वस्तु को छोड़कर, और मान लो आप न्यूज पढ़ते भी हो तो पढ़कर आप क्या कर लोगे। मानो 10 चोर वहां चोरी करके चले गए तो आप उसे पकड़ने जाने वाले, कुछ नहीं कर सकते हम, केवल दिमाग बिगड़ेगा बस। हाँ, हमारे प्रधान जी जैसे कुछ कर भी सकते हैं, चलो कुछ पोस्ट पर है, कुछ नेता है तो उसे पढ़ने की आवश्यकता है, ये तो हम मानते हैं, परंतु बस हमारे शौक के लिए तो ये बहुत गलत चीज है। कृष्ण प्रेम चाहिए, भगवत प्रेम। यदि प्रहलाद महाराज के गुण का वर्णन करते हैं और गुण के बाद कर्म का वर्णन करते हैं, नवेद जगत ईदृशम, जगत के बारे में नहीं ध्यान था। कहते हैं प्रहलाद महाराज जब बैठते थे, आसीत पर्यटन अश्नन शयान प्रविवन ब्रुवन न अनुसंधाते एतानी गोविंद परिरंभित। प्रहलाद महाराज कब बैठते थे, कब खड़े होते थे, कब चलते थे, उसका कोई ज्ञान नहीं रहता था। लेकिन प्रश्न हो कि प्रहलाद महाराज के कार्य तो बहुत अच्छे अच्छे होते थे, चलना उठना बैठना ये कोई ज्ञान नहीं रहता था, तो ये कार्य कौन करता था। कहते हैं गोविंद परिरंभित, भगवान कृष्ण गोविंद प्रहलाद महाराज के सभी कार्य को संपूर्ण करते थे। वास्तव में यदि हम भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो हमसे कुछ कार्य मान लो अधूरा भी रह जाए तो कृष्ण उसे पूरा कर देते हैं। भगवान इतने कृपालु हैं। महाभारत में दुर्योधन का सेवा करने वाला एक नाई था, रोज शाम को आकर दुर्योधन के अंग को मसाज करता था। बेचारा बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वह नाई बीमार हो गया और दुर्योधन के पास नौकरी में नहीं जा पाया, और बेचारा सोते सोते सोच रहा है कि मैं दुर्योधन के पास नहीं जा पाया, दुर्योधन मुझे नौकरी से निकाल देगा, अब मेरा क्या होगा। लेकिन फिर वह नाई कृष्ण को याद करता है, प्रभु आप मेरी लाज रखिएगा, मेरी रक्षा कीजिएगा, मेरी नौकरी न चली जाए। इतना सुनकर भगवान तो अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं। उस समय भगवान कृष्ण उसी नाई का रूप लेकर दुर्योधन की शिविर में गए और दुर्योधन के पास जाकर उस दिन कृष्ण नाई का रूप लेकर दुर्योधन के चरण दबाने लगे, दुर्योधन को मसाज करने लगे, हाथ दबाया, मस्तक दबाया, चरण दबाए। महाभारत में लिखा है दुर्योधन कहने लगा कि नाई, इतने दिन से तू मेरा मसाज कर रहा है, इतने दिन से तुम मेरा मसाज कर रहे हो, परंतु आज जो मसाज करने में मुझे आनंद आ रहा है, आज तक ऐसा आनंद नहीं आया मुझे, आज तुम क्या खाकर आए हो। मूर्ख दुर्योधन नहीं जानता था कि मसाज करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिपति परब्रह्म भगवान कृष्ण मसाज कर रहे हैं। क्यों? अपने भक्त की लाज रखने के लिए है। भगवान अपने भक्त के सभी काम पूर्ण करते हैं। इस राजस्थान के बाजू में ही गुजरात है और गुजरात में जूनागढ़ है। जूनागढ़ में एक बहुत बड़े भक्त हो गए जिसका नाम नरसिंह मेहता। आज भी जूनागढ़ में नरसिंह मेहता की जो करताल है गूंज रही है। नरसिंह मेहता भगवान श्री कृष्ण के भक्त, पहले तो वे शिवजी के भक्त थे, परंतु शिवजी की निष्काम भक्ति किए। शिवजी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? नरसिंह मेहता ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तो क्यों खामखा परेशान कर रहे हो? जिसकी भक्ति करनी चाहिए उसकी करो, मेरी भक्ति क्यों कर रहे हो? बोले भक्ति किसकी करनी चाहिए? शिवजी ने कहा मैं जिसकी भक्ति करता हूं उसकी, उस कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। इतिहास साक्षी है, शिवजी नरसिंह मेहता का हाथ पकड़कर साक्षात वृंदावन में लेकर गए और कृष्ण और गोपियों का रासलीला का दर्शन कराए। सार्थक हो गया, शिवजी भी कृष्ण के भक्त हैं। और यदि कोई शिवजी की भक्ति करता है निष्काम भाव से, भोलेनाथ के पास कुछ धन और पैसे की लालच से नहीं, निष्काम भाव से शिवजी की भक्ति करता है, तो शिवजी उसे कृष्ण की भक्ति में लगाते हैं। शिवजी चाहते हैं कि मेरे भक्त कृष्ण की भक्ति करें। शिवजी को क्षेत्रपाल कहा गया है। आप देखिए जहां भी कृष्ण का मंदिर होगा उसके बगल में शिवजी का मंदिर निश्चित होगा। यहां तो मुझे पता नहीं है, परंतु हमारे मुंबई में कहीं भी कृष्ण का मंदिर हो तो बाजू में शिवजी का मंदिर बन ही जाता है। ऐसा नहीं कि ये सोचकर बनाते, कैसे भी शिवजी आ ही जाते हैं। तो इस प्रकार गोविंद परिरंभित, नरसिंह मेहता के बारे में कह रहा था, कृष्ण के भक्त थे और उनकी लड़की का विवाह करना था। आप तो जानते हैं लड़की का विवाह करने के लिए कितना खर्च होता है, मेहनत होती है, लेकिन नरसिंह मेहता को कोई टेंशन नहीं। वे तो भगवान की भक्ति करते थे और साक्षात कृष्ण नरसिंह मेहता के पास आए और उनकी लड़की का विवाह कराना। एक बार नहीं 500 बार भगवान श्री कृष्ण आए और नरसिंह मेहता के घर के कार्य करके चले गए। जो कृष्ण की भक्ति करते हैं कृष्ण निश्चित उनके कार्य को पूर्ण करते हैं, सफल करते हैं। प्रहलाद कृष्ण की भक्ति में इतने मग्न थे, कहते हैं क्वचित रुदती, प्रहलाद कभी कभी रोते थे, क्वचित हंसती, कभी कभी हंसते थे, तो क्वचित कभी कभी उद्गायती क्वचित, कभी कभी गाने लगते थे, कभी कभी अचानक रोने लगना, कभी कभी सहसा हंसने लगना, कभी नाचने लगना, कभी गाना। इस प्रकार से प्रहलाद भगवान की भक्ति में स्थित रहने के कारण उनके कार्य अद्भुत अद्भुत हुआ करते थे। तो ऐसे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने, मान लो एक प्रश्न हो सकता है कि यह प्रहलाद हिरण्यकश्यपु एक असुर का पुत्र होते हुए भी इतना बड़ा भक्त कैसे हुआ? स्वाभाविक एक प्रश्न हो सकता है। प्रहलाद असुर परिवार में और उसका पिताजी बहुत बड़ा पाखंडी था, असुर था, फिर भी प्रहलाद इतने बड़े भक्त क्यों? इसका कारण यह है कि उनकी मां जब गर्भवती थी तब उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा सुनी थी। इतिहास इस प्रकार से है कि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए घर से चला तो सबसे पहले वृंदावन में मधुवन में गया। ये गर्ग संहिता या ब्रह्म वैवर्त पुराण में यह कथा है कि जब हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया तो मधुवन में, वृंदावन में तपस्या करने गया और वहां खड़े रहकर दोनों हाथ ऊपर करके तपस्या प्रारंभ किया। परंतु आप सब जानते हैं कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार अरु पात पात पर राधे राधे होई। वृंदावन में रहने वाले सब लोग के मुख में राधे राधे होता है। यह अद्भुत धाम है वृंदावन में सभी भक्त राधे राधे। आप यदि परिक्रमा कर रहे हो, सामने कोई भी मिला तो राधे राधे। रिक्शा वाले भी हॉर्न नहीं बजाते हैं, राधे राधे। चिड़िया पक्षी पशु वृक्ष सब के मुख में राधे राधे। हिरण्यकश्यप जब तपस्या करने लगा तो बाजू में एक वृक्ष था, शुक और सारिका बैठे थे और दोनों अपने मुख से हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे,
दोनों अपने मुख से भगवान का नाम ले रहे थे। और हिरण्यकश्यप देख रहा था कि ये लोग भगवान का कृष्ण का नाम ले रहे हैं। हिरण्यकश्यप डिस्टर्ब हो गया, मेरे शत्रु का नाम ले रहे हैं, क्रोध आया। परंतु तपस्या में क्रोध नहीं होना चाहिए। जैसे ही तपस्या करने लगा फिर से ये लोग कृष्ण का नाम लेने लगे। तब हिरण्यकश्यप ने सोचा कि एक काम करता हूं, घर पर वापस चला जाता हूं और फिर कभी तपस्या करने आऊंगा। हिरण्यकश्यप वहां से वापस अपने घर पर गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाधु था। हिरण्यकश्यप जब घर पर आए तो उनकी पत्नी कयाधु ने पूछा, पतिदेव आप तो लंबे समय के लिए तपस्या करने गए थे, इतना जल्दी वापस क्यों आ गए? हिरण्यकश्यप ने कहा, शाम को जवाब दूंगा। शाम हो गई, अब दोनों बिस्तर पर सो गए। हिरण्यकश्यप जब सोने गया तो कयाधु ने पूछा, पतिदेव आपने कहा था शाम को जवाब दूंगा, आपने जवाब नहीं दिया कि आप तपस्या करने गए थे, वापस क्यों आ गए? हिरण्यकश्यप ने कहा, क्यों मेरा दिमाग बिगाड़ रही हो? पत्नी ने कहा, नहीं आप बताओ वापस क्यों आए? स्त्री की हठ जो है, तीन हठ प्रसिद्ध है, राज हठ, बाल हठ और स्त्री हठ। झुकना ही पड़ता है। कहा, आप बताओ आप क्यों वापस आए? हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या बताऊं, मैं गया था वृंदावन में, मधुवन में तपस्या करने के लिए जब खड़ा हुआ, छोड़ो ना, क्या बताना उसका नाम क्या लेना। नहीं पतिदेव आप बताइए आप क्यों वापस आए? वृंदावन में गया, मधुवन में तपस्या करने के लिए खड़ा रहा। जैसे ही तपस्या प्रारंभ किया तो वह दोनों तोते बोलने लगे, क्या बताए क्या बोले? नहीं नहीं पतिदेव आप बताइए वो क्या बोल रहे थे? तब हिरण्यकश्यप ने कहा, गया वहां पर, जैसे तपस्या प्रारंभ किया तो वे दोनों हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे।
हिरण्यकश्यप के मुख में जीवन में पहली बार भगवान श्री कृष्ण का नाम आया और उसी समय गर्भाधान संस्कार हुआ। उसी समय हिरण्यकश्यप के द्वारा कयाधु के गर्भ में एक बालक आया। देखिए इस प्रकार से भगवान का नाम लेकर गर्भाधान होने के कारण कयाधु के गर्भ में एक भक्त बालक का जन्म हुआ। आपने कई बार सुना होगा कि बालकों को सुधारने के लिए संस्कार देना चाहिए और जब छोटे होते हैं तब संस्कार देंगे तो बहुत ठीक रहता है, क्योंकि बड़े बूढ़े तो समझते नहीं है। परंतु बचपन से भी बालक का वास्तविक संस्कार गर्भाधान संस्कार से होता है। यदि ठीक से गर्भाधान संस्कार हुआ, अपनी मन और बुद्धि और चित्त को भगवान के नाम में, भगवान के स्वरूप में, भगवान की लीला में अपने मन बुद्धि को रखकर गर्भाधान संस्कार किया तो गर्भ से भक्त पुत्र का जन्म होगा। और यदि काम वासना से मोहित होकर गर्भाधान हुआ तो वह पैदा होने वाला बच्चा भी कामी होगा। आज कई माता पिता कहते हैं, हमारे बच्चे इतने कामी क्यों है, क्यों नहीं हो गए? इसमें बच्चे का कोई दोष नहीं है, माता पिता का दोष है। माता पिता को चाहिए कि योग्य गर्भाधान विधि से गर्भाधान करें। एक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जन्म संस्कार, मृत्यु संस्कार, विवाह संस्कार, नामकरण संस्कार, उपनयन संस्कार, उनमें से एक है गर्भाधान संस्कार। परंतु आज संसार के लोग काम वासना में इतने मोहित हो जाते हैं कि इस बात को नहीं देखते हैं और काम वासना से मोहित होकर संतान पैदा करते हैं, वो संतान भी काम ही हो गए। इसलिए चाहिए गर्भाधान करें। अर्जुन का ये बहुत बड़ा प्रश्न था भगवद गीता के प्रारंभ में कि हे कृष्ण, यदि मैं ये महाभारत के युद्ध में सबका वध कर दूंगा तो ये सबकी पत्नी जो है सब विधवा हो जाएगी। कुलक्षणे प्रयश्चन्ति कुल धर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्यत अधर्म अभिभवत्युत। हे कृष्ण, यदि मैं मेरे गांडिल से सबको मार सकता हूं परंतु ये लोग मर गए तो उनकी पत्नी विधवा हो जाएगी, और पत्नी विधवा हो गई उसके कुल में यदि पुरुष नहीं रहा तो कुल में अधर्म प्रवेश करेगा। अधर्म अभिभवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टास्तु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। और जैसे ही कुल में अधर्म प्रवेश होगा तो वह अधर्म स्त्री को स्पर्श करेगा, और जब स्त्री अधर्मी हो जाएगी, स्त्रीषु दुष्टास्तु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर, तो स्त्री के द्वारा वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होगी। ये वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न करने का जो सोर्स है वो स्त्रियां है, और ये वर्ण संकर प्रजा संकरो नरकाये व कुल ज्ञाना कुलस्य च पतंती पितरो यशा लुप्त पिंडो दकह क्रिया। और जब स्त्री ने कोई अच्छी संतान को जन्म नहीं दिया तब वह संतानें आगे चलकर पिंड दान नहीं करेगी, जल दान नहीं करेगी, और उस संतान के द्वारा मान लो पितरु जो है कुछ पुण्य करके स्वर्ग में भी गए हैं, परंतु यह संतान ऐसी उत्पन्न होगी कि अपने कार्य के द्वारा अपने स्वर्ग में गए हुए माता पिता को नरक में भेज देगी। इसलिए मैं इस लोगों को नहीं मारना चाहता, मैं स्त्रियों की रक्षा करना चाहता। ये संतान का भार स्त्रियों के हाथ में। इतना ही नहीं, गर्भाधान के समय और जब बालक गर्भ में हो तब संस्कार दिया जाता है। अब देखिए, फिर बाद में हिरण्यकश्यपु मंदार पर्वत के ऊपर तपस्या करने गया और यहां पर कयादु गर्भवती थी, और देवराज इंद्र को पता चला कि हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गया है और कयादु के गर्भ में एक बालक है, और हिरण्यकश्यपु का बालक हिरण्यकश्यपु जैसा ही होगा। एक तो हिरण्यकश्यपु सबको दुखी कर रहा है और दूसरा इसके गर्भ से जन्म ले लिया तो और आतंक मचेगा। इसलिए देवराज इंद्र ने इस कयादु को हिरण्यकश्यपु की पत्नी को बंदी बना लिया, और हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयादु को बंदी बनाकर देवराज इंद्र स्वर्ग में लेकर जा रहे थे, बीच में नारद मुनि मिले। नारायण नारायण, नारद मुनि ने कहा, इंद्र आप इसे कहां लेकर जा रहे हो? बोले नारद मुनि, इसके गर्भ में एक असुर संतान पल रही है, आगे चलकर वह आतंक न करें इसलिए मैं इसे स्वर्ग में लेकर जा रहे हूं, और जब यह प्रसव करेगी तो जन्म करते ही मैं उसे मार डालूंगा और स्त्री को छोड़ दूंगा। नारद मुनि तो भविष्य दृष्टा है। नारद मुनि ने कहा, देवराज इंद्र तुम भूल रहे हो, इसके गर्भ में असुर संतान नहीं है, इसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त महाभागवत प्रहलाद पल रहा है। तुरंत इंद्र ने छोड़ दिया। साक्षात मां भवानी प्रकट हुई थी और उन्होंने तलवार प्रदान की, शिवा इससे युद्ध करना, जीवन में कभी हारोगे नहीं। और एक से एक पराक्रम शिवाजी ने हमारे महाराष्ट्र में किए। कारण क्या था? जब शिवाजी उनकी मां जीजा माता के गर्भ में थे तब मां जीजा माता शिवाजी को राम और कृष्ण की कथा सुनाती थी। जिसके बच्चे राम और कृष्ण की कथा सुनते हैं उससे उसके बच्चे सुरवीर और साधु होते हैं, और जिसके बच्चे टीवी और फिल्म देखते हैं उसके बच्चे साधु नहीं, उसके बच्चे पापी होते हैं, कामी होते हैं। इसलिए निर्णय आपके हाथों में है, क्या करना है आप अपने बच्चे को। आपका हमारा जीवन तो गया अज्ञान में और अंधकार में, लेकिन आने वाली पीढ़ी को हम सुधारना चाहते हैं कि बिगाड़ना चाहते हैं, यह निर्णय हमारे हाथ में है। आज टीवी को देखकर आज 99.99% समाज बिगड़ा है टीवी के कारण, 100% सत्यवाद है। आज भी गांव में ये घूंघटू तान कर बैठे हैं, क्यों? क्योंकि टीवी नहीं पहुंचा है, और पहुंचा भी है तो देखने का समय नहीं है, नहीं तो शहरों में तो ये सब निकल गया, और कपड़े भी साड़ी निकल गई, जींस भी निकल गया, चड्डी पहनकर घूमते हैं माताएं स्त्रियां, और कुछ दिन के बाद यह भी निकल जाएगा। दुख इस बात का है, क्यों? क्योंकि टीवी रात दिन टीवी में दिखाया जाता है, और आंख कान, यदि हम हमारे बच्चे को बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले टीवी से बचाइए। और हम लोग क्या करते हैं, टीवी को खरीद कर डिश लाते हैं, घर का ठिकाना नहीं है, झोंपड़ी में रहते हैं, परंतु डिश सबके घर पर होती है, केबल और टीवी सबके घर पर, इसीलिए तो बिगड़ रहे हैं। और टीवी में क्या दिखाते हैं, बस यही दिखाते हैं कि इस प्रकार छोटे कपड़े पहनना, किसी लड़की के साथ भागना नाचना, इसी में सुख है। और रात दिन यही दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, इसलिए लोगों की बुद्धि बस इसी में फिट हो गई, इसी में सुख। जैसे मान लो आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और टेप रिकॉर्ड शुरू कर दिया जाए, मैं पागल हूं, 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 एक महीने के बाद फिर उससे बाहर निकाला जाए तो व्यक्ति बाहर आकर क्या कहेगा, मैं पागल हूं, हो ही जाए। रात दिन यही दिखाया जाता है कि बस काम वासना में सुख है, ये करना सुख है, इसलिए सबके बुद्धि में यह फिट हो गया है। आज स्कूल जाने वाला लड़का यही सोचता है, जब लड़की के साथ फ्रेंडशिप करूंगा तब सुखी हो जाऊंगा, क्यों? क्योंकि टीवी में देखा है, माता ने तो कभी सिखाया नहीं, पिता ने कभी पढ़ाया नहीं, ना तो गुरु स्कूल में ऐसा पढ़ाते, तो सीखते कहां से है, टीवी से। ये टीवी सबको बिगाड़ती, टीवी अच्छी चीज है, मैं कोई ये सोनी या वीडियोकॉन वालों का दुश्मन नहीं हूं, ये टीवी बहुत अच्छी चीज है, टेलीविजन, परंतु इसका अच्छा इस्तेमाल हो तब। इस टीवी से महाभारत सीरियल देखा जाता है, कृष्णा भी देख सकते हैं, भागवत कथा भी देखकर सुन सकते हैं, इसका इस्तेमाल ठीक से होना चाहिए, इस्तेमाल यदि गलत हो गया तो यही टीवी हमको नरक में लेकर जाएगा। और जिसके घर पर टीवी है और गलत इस्तेमाल हो रहा है, और यदि वह सोचे कि भगवान मिलेंगे, कभी नहीं, भगवान पहले भेजते हैं नारद या किसी को, जरा देख कर आओ टीवी है कि नहीं उसके घर पे, टीवी नहीं है उसी के घर पर जाते हैं, ऐसा होता नहीं है, परंतु मेरा ऐसा मानना है। तो इस प्रकार प्रहलाद महाराज ने गर्भ में, कयाधु गर्भवती थी और उस समय श्रीमद् भागवत कथा को सुना और गर्भाधान ठीक से हुआ, इसलिए असुर होते हुए भी हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद हुआ। तैसे प्रहलाद को हिरण्यकश्यप जब वापस आए तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को गुरुकुल में भेजा पढ़ने के लिए। हिरण्यकश्यप के गुरु थे जिसका नाम शुक्राचार्य था, और उस शुक्राचार्य के दो पुत्र थे शंड और अमरक। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को शंड और अमरक के पास गुरुकुल में पढ़ने भेजा, और प्रहलाद गुरुकुल में शंड और अमरक जो भी सिखाते सब सीख लेते। एक साल प्रहलाद महाराज कुल में पढ़े और एक साल के बाद, जैसे वेकेशन होता है, आज वेकेशन चल रहा है सबका, वैसे प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में वेकेशन हुआ और प्रहलाद महाराज अपने घर पर आए। जैसे ही घर पर आए तो माता कयाधु ने प्रहलाद महाराज को, क्योंकि गुरुकुल में बच्चे ठीक से स्नान नहीं करते हैं, अपने पुत्र प्रहलाद को ठीक से स्नान कराया, अच्छे कपड़े पहनाए, बाल में तेल डालकर ठीक से बाल बनाया और भेजा अपने पिता के पास, जाओ अपने पिता को मिल के आओ। पिताजी सिंहासन पर बैठे थे, प्रहलाद गए और हिरण्यकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत प्रेम करता था, उसे उठाकर हिरण्यकश्यप ने अपने गोद में बिठा लिया हिरण्याकश्यप वो अपने पुत्र प्रहलाद को के पहले तो मस्तक को सूंघता है, प्रहलाद के मस्तक को सूंघ कर उसके बाल में हाथ घुमाते हुए हिरण्याकश्यप कहता है, बेटा बेटा तू एक साल गुरुकुल में पढ़ा है, ये गुरुकुल में तू जो भी पढ़ा है उसमें सबसे अच्छी बात तुझे कौन सी लगी? पता है ना, आज भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, पिताजी शाम को घर पर आते हैं तो कहते हैं, बेटा आज स्कूल में क्या पढ़ाया? हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा तूने गुरुकुल में जो पढ़ा है उसमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? हिरण्याकश्यप ने सोचा, प्रहलाद कहेगा किस प्रकार से राजनीति करना चाहिए ये अच्छा लगा, या दाव पेच कैसे लड़ना चाहिए ये अच्छा लगा, या तलवार कैसे घुमानी चाहिए ये अच्छा लगा। हिरण्याकश्यप के मन में ये था, परंतु प्रहलाद सोच रहे थे, ये पिताजी मुझे न पूछे तो ही अच्छा है, यदि सुन लेंगे तो इसको पहला हार्ट अटैक आ जाएगा। मन में प्रहलाद सोच रहे थे कि यदि पिताजी मेरे मुख से सुन लिया तो इसे हार्ट अटैक आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन पिताजी ने एक बहुत कहा, प्रपच्छ कथ्यत्याम मन वत्स मन्ये साधु यद भवान। अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? प्रहलाद ने कहा, पिताजी जानना ही चाहते हो? पक्का? हाँ बेटा बता। तो कहते हैं, हे असुरों के सरदार, प्रहलाद महाराज ने अपने जीवन में कभी भी अपने पिता को पिता नहीं कहा। भागवत में आया है, तत्साधु मनिये असुर वर्य देही नाम सदा समुद्विघ्न धियाम असत ग्रहात हितवात्म पातम ग्रीमंद कूपम वनम गतोयत हरिमाश्रयेत। ये तो संस्कृत में हो गया, परंतु प्रहलाद ने कहा, असुर वर्य, हे असुरों के सरदार, अपने पिताजी को फादर, पिता, बापूजी ऐसा नहीं कह रहे हैं। प्रहलाद अपने पिता को क्या कह रहे हैं? असुरों के सरदार। प्रहलाद अपने पिता को पिता क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि वह पिता है ही नहीं। पिता तो उसे कहते हैं जो अपने पुत्र को भक्ति में लगाता है। आप कहोगे ये तो आप भक्त हो इसलिए अपनी अपनी बड़ाई कर रहे हो, नहीं। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्र को उपदेश देते हुए यह बात कहते हैं। आप कहेंगे प्रमाण? यह श्लोक बताते हैं, गुरु न सस्यात् स्वजन न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न मोचयेत समुपेत मृत्युम। वह माँ माँ नहीं है, वह पिता पिता नहीं है जो अपने पुत्र को भक्त न बनाता है। जो अपने पुत्र को भक्त नहीं बना सकता है वह पिता पिता नहीं है। इसका अर्थ यह है कि एक पिता का अपने जीवन में सबसे पहला कर्तव्य अपने पुत्र को भक्त बनाना है, और आज के पिता पुत्र को जन्म देकर पशु जैसे छोड़ देते हैं। पुत्र चाहे कुछ भी करे, पढ़े लिखे, टीवी देखे। शास्त्र में आया है कि यदि आप अपने पुत्र को भक्त बना सकते हो तब ही पुत्र पैदा करने के योग्य हो, और यदि आप अपने पुत्र को भक्त नहीं बना सकते हो तो आप में कोई योग्यता नहीं है कि एक पुत्र को भी जन्म दो। जन्म नहीं देना चाहिए, क्योंकि पिता वही पिता पिता कहलाता है जो अपने पुत्र को भक्त बना सके। तो ये हिरण्याकश्यप तो अपने पुत्र को भक्ति से दूर कर रहा था, इसलिए प्रहलाद कभी अपने पिता को पिता नहीं कहा। तो प्रश्न हो सकता है, तो क्या हिरण्याकश्यप को बुरा नहीं लगता था? नहीं, प्रहलाद महाराज कहते थे, हे असुरों के सरदार, तो हिरण्याकश्यप कहता, चलो पापा नहीं कह रहा है लेकिन कम से कम मेरे प्रभाव को तो जानता है, मैं सरदार हूं, कम से कम ये तो समझ रहा है, इसलिए ये जानकर खुश रहता है। हिरण्याकश्यप ने पूछा, बेटा गुरुकुल में जो पढ़ा है उसमें सबसे अच्छी शिक्षा कौन सी लगी? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी क्या बताऊं, इस संसार में सब लोग जितने भी देहधारी जीव हैं, और सबकी बात छोड़ दीजिए, मैं आपकी बात करूं, आप अपने देह के संबंध में इतने फंस चुके हो, इतने फंस चुके हो, आपकी बुद्धि भ्रमित है, आप बिल्कुल बुद्धू हो। हिरण्याकश्यप प्रहलाद हिरण्याकश्यप को कह रहे हैं, आप इस संसार में इस गृहस्थ रूपी अंधेरे कुएं में गिर चुके हो। गृहस्थी को अंधेरा कुआं कह रहे हैं। शिवाशिदर स्वामी बहुत सुंदर कहते हैं, वास्तव में गृहस्थी जो है अंधेरे कुएं के समान है। यदि गृहस्थी में रहना न आए तो, गृहस्थी में रहना नहीं सीखे हो तो यह गृहस्थी कैसी है? हितवात्म पातम गृह अंधकूपम। अंधेरा कुआं जानते हैं? राजस्थान में रहने वाले तो बहुत जानते होंगे। अंधेरा कुआं अर्थात कुएं में पानी होता है, फिर क्या होता है, वो कुएं से पानी खाली हो जाता है। जब कुएं से पानी खाली हो जाता है तो वहां पर कोई आता जाता नहीं है, इसलिए कुएं के आजू बाजू में घास उग जाते हैं और वह घास इतना उग जाते हैं कि कुएं को घेर लेते हैं, पता नहीं चलता है वहां कुआं था या नहीं था। तो होता क्या है, कभी कभी कुछ बकरियां होती हैं, वह घास खाने के लोभ में वे देखती है कि वहां पर हरी हरी घास है, तो बकरियां हरी घास खाने के लोभ में वहां जाती हैं। और जैसे वैसे बकरी वह हरी घास खाने के लोभ में जाती है, जैसे ही वह घास उसके मुंह में आता है, धड़ाम करके उस कुएं में गिरती है, सिर के बल गिरती है। ये पहली गिरी, बाद में उसके पीछे दूसरी गिरती है, तीसरी, चौथी, पांचवी, 500 बकरियां गिर जाती है उस कुएं में। ये बकरी और कोई नहीं, हम लोग हैं। और ये गृहस्थ जीवन अंधेरे कुएं के समान है। संत साधु कहते हैं विवाह मत करो, ब्रह्मचारी रहो, ब्रह्मचारी रहो, लेकिन हम कहते नहीं, शादी तो करेंगे और कर लेते हैं। जो ब्रह्मचारी होते हैं उसे लगता है कि शादी में तो बहुत आनंद है, ये पति पति कितना सुंदर घूम रहे हैं, और शादी करके देखो ये पति के गाल निकल गए हैं और लाल लाल गाल हो गए हैं, लेकिन उसे पता नहीं थप्पड़ खाकर लाल हुए हैं। जिसने शादी नहीं किया बेचारा अज्ञान में जानता नहीं है। और हरी हरी घास, जैसे वो बकरी को दूर से घास हरी हरी लगती है, वैसे लोगों को लगता है शादी करूंगा खुश हो जाऊंगा, शादी करूंगा सुखी हो जाऊंगा, और रात दिन शादी करने के लिए सोचते हैं। और जब वह शादी करता है, जैसे वह बकरी घास मुंह में आ जाती है और अंधेरे कुएं में गिरती है, सिर के बल पटक जाती है वहां, वैसे शादी करते ही वह गिरता है। होता है ना, शादी करने से पहले शेर की तरह घूमते हैं इस गलियों में, दुकान वालों ने देखा होगा, और शादी के बाद चूहे बन जाते हैं, चूहे है? शादी के पहले व्यक्ति बिंदास होता है क्योंकि अकेला होता है, कोई टेंशन नहीं, और शादी के बाद तो पूरी फजीहत, पत्नी और फिर पत्नी के माता पिता सास ससुर सबका ध्यान रखना पड़ता है, साला। तो इस प्रकार शादी करके व्यक्ति बेचारा फजीहत में फंसता है, दुखी होता है। ठीक है, एक व्यक्ति ने शादी कर लिया, पिता ने शादी कर लिया, परंतु ये दुख की बात यह है कि ये बकरी की तरह भेड़िया ढसान चल रही है। एक बकरी गिरी, उसको दर्द हुआ, तो दूसरी बकरी को सोचना चाहिए ना, बेचारा ये दुखी है तो हम न गिरे। लेकिन यहां एक गिरा, दूसरा गिरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लोग लाइन में खड़े हैं। ये आश्चर्य की बात है। एक को देखकर बुद्धिमान व्यक्ति एक को देखकर समझ जाता है, परंतु यहां पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं। शादी करने वाले को पूछिए तो सही, कभी आप सुखी हो दुखी हो क्या चल रहा है, जानते हैं सुनते हैं देखते हैं, लेकिन फिर भी शादी करते हैं। देखिए, शादी कीजिए, मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि आप सब लोग कुंवारे रह जाओ, नहीं तो हमारी माताएं बिचारी कहां जाएगी है? शादी करो, शादी करने में कोई अर्ज नहीं है, परंतु गृहस्थ जीवन कैसे बिताना ये सीख लेना चाहिए, है ना। शादी करके एक पति पत्नी के कर्तव्य क्या है, कैसे घर पर रहना, कैसे व्यवहार करना, भगवान की भक्ति, भगवान को भोग लगाकर खाना, सब भक्तिमय यदि जीवन है तो सुख ही सुख है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी आप तो विवाह किए हो और इस अंधेरे कुएं में गिरे हो और आप रात दिन टेंशन लेते फिरते हो, इससे तो अच्छा है ये माला जोली पकड़कर आप वृंदावन में जाकर हरे कृष्ण महामंत्र जपो। आप ताली बजा रहे हो, वहां हिरण्याकश्यपु का क्या हुआ जानते हैं? हिरण्याकश्यपु की कान मुख सब लाल लाल हो गया, धुआं निकलने लगा, क्योंकि एक विष्णु उनका शत्रु था। बोले मेरे शत्रु की भक्ति करने के लिए बोल रहा है हिरण्याकश्यपु ने। एक सेकंड में सोच लिया ये बालक का कोई दोष नहीं है, क्योंकि बालक को कोई चॉकलेट देकर कहता है ये बोलो तो बोल देता है, ये दोष इसके गुरु का है। जोर से चिल्लाया शांड अमर, ये प्रहलाद के गुरु दोनों दौड़ते दौड़ते आए। बोले सरकार क्या हुआ क्या हुआ? हिरण्याकश्यपु कहते ये तेरा बाप क्या बोल रहा है जरा पूछो इसको। मैं पूछा इसे कि तुम्हें पढ़ने में अच्छी बात कौन सी लगी? ये तो तुम्हारा बाप बोल रहा है कि कृष्ण की भक्ति करो, क्या तुमने यही सिखाया है? शंड और अमर तो डर गए, माई बाप हमने इसे ऐसा कभी नहीं सिखाया, आप हम पर शक मत करो। तो हिरण्याकश्यपु ने कहा आपने नहीं सिखाया तो हो सकता है इसको उनके कोई भक्त आ गए होंगे सिखाने के लिए। एक काम करो इसका ध्यान रखना, कोई बाहर से कोई भक्त आकर ऐसा गलत गलत बात न पढ़ावे, इसे लेकर जाओ और ठीक से शिक्षा दो। इस प्रकार प्रहलाद महाराज 2 महीने तक पिताजी के घर पर रहते हैं और फिर से प्रहलाद महाराज को गुरुकुल में भेजा जाता है ये भौतिक विद्या को प्राप्त करने के लिए। ठीक है समाचार हो गया है, प्रहलाद महाराज जा रहे हैं गुरुकुल में और हम जाएंगे अपने अपने घर पर। मैंने बहुत प्रयास किया परंतु आज ये नहीं हो पाया, आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। अब प्रहलाद महाराज गए हैं गुरुकुल में, 1 साल पढ़ेंगे फिर से आएंगे। हिरण्याकश्यपु फिर से पूछेंगे प्रहलाद अब बता अब कौन सी बात अच्छी लगी। प्रहलाद कहते हैं पिताजी मत पूछिए ना, दूसरा अटैक आ जाएगा, फिर एक ही अटैक बचेगा क्योंकि 3 अटैक में तो मर जाते हैं। नहीं बेटा सबसे अच्छी बात कौन सी लगी कल प्रहलाद बताएंगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु नवदा भक्ति के बारे में, और फिर खंबे के साथ खंबे को गर्म किया जाएगा और बहुत कुछ कथा आएगी। नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए, कल 3 अवतार की कथा होगी, इसलिए आप सब भक्तों से निवेदन है कल आप समय से आ जाइए और इस कथा को सुनकर अपने जीवन को धन्य कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।